गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा मिथाई गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने हरे कृष्णा। अधिक समय न गवाते हुए सुबह हम राधा कुंड श्याम कुंड गए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी की बहुत सुंदर सुंदर कहानियां हैं। वे जगन्नाथपुरी में थे, चैतन्य महाप्रभु के संग में थे और जब चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान हो गए तो बहुत दुखी हो गए। तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अभी जिंदा नहीं रह पाऊंगा, गिरिराज गोवर्धन पे चढ़कर कूद कर अपनी आत्महत्या कर लूँगा। तो सनातन गोस्वामी ने उनको निर्देश दिया कि आपका शरीर चैतन्य महाप्रभु का है, आपका नहीं है, तो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी आप कैसे नष्ट कर सकते हो? आप श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन के आपके जो अनुभव हैं उसकी कथा कीजिए। तो फिर वहाँ पर राधा कुंड के किनारे उन्होंने रोज़ 3 घंटे श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में जो भी उनके संग लीला और उन्होंने अवलोकन किया उसका वर्णन करना शुरू किया। ये एक घटना है। जैसा मैंने आपको आज सही बार बताया उनके भजन के बारे में और उनके भजन की तीव्रता के बारे में, उनकी विरक्ति कितनी सर्वोच्च थी। तो वो इतना तीव्र भजन करते थे कि एक समय वो जब भजन कर रहे थे राधा कुंड के किनारे, तो वो इतने मग्न थे भजन में अपने कि वहाँ पर एक शेर आया और वो राधा कुंड में जल पीने लगा और उन्हें किसी बात का होश नहीं था। उतने में सनातन गोस्वामी वहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि शेर जो है उनके बाजू में पानी पी रहा है, उनको कुछ होश नहीं है। तो फिर कुछ देर बाद में फिर कृष्ण आए, स्वयं कृष्ण प्रकट हुए और ये सब सनातन गोस्वामी देख रहे हैं। और कृष्ण आए और कृष्ण ने डंडा लेकर, सही टाइम पे डंडा आ गया, डंडा लेकर शेर को भगा दिया। और फिर रघुनाथ दास जी से कहा कि आप कैसे भक्त हो, आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हो और उसका भाव यह है कि आपकी सेवा में हमें लगाइए आप, और आप कृष्ण को अपनी सेवा में लगा रहे हो, ऐसा भजन कर रहे हो, क्यों ना अपनी कुटी बना लेते आप? अगर कुटी बना लेंगे, अंदर भजन करेंगे तो शेर वेर के कोई कष्ट नहीं होगा। तो फिर भी वो इतने विरक्त थे, मेरे लिए कुटी क्या बनाए, मैं किनारे भजन करूँगा। तो गर्मी का मौसम था, तो गर्मी के मौसम में वो भजन कर रहे थे, तो इतनी सख्त गर्मी थी, इतनी सख्त गर्मी थी कि सबका बदन जल रहा था और ऐसे खुले हुए वातावरण में वे भजन कर रहे थे। और आई थिंक आई एम गेटिंग टू डिस्टर्ब दिस साउंड, इफ यू कैन मैनेज दैट साउंड इज बेटर। संदीप जी थोड़ा सा आई नीड टू। तो मैं ये कह रहा था कि इतनी सख्त गर्मी थी कि सबका बदन जल रहा था और ये अपने नाम भजन में इतने मग्न थे और मुग्ध थे कि उस समय राधा रानी को ये उनका कष्ट जो भजन का है वो सहन नहीं हुआ। राधा रानी स्वयं प्रकट हो गई वहाँ पर और उन्होंने अपना जो पल्लू है वो ऐसा उस पर रखा छाया के लिए। और सनातन गोस्वामी फिर ये इस पर भी वो साक्षी थे, वस्त्र पकड़ा उनके ऊपर, छाया दी उनको और राधा रानी के भाल प्रदेश से टप 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 श्वेत बिंदु गिर रहे थे और राधा रानी की त्वचा जल रही थी। इसका दर्शन सनातन गोस्वामी ने किया और रघुनाथ दास गोस्वामी को इसका कुछ भी पता नहीं है। कुछ देर बाद राधा रानी जब अंदर धान हो गई तो फिर सनातन गोस्वामी ने रघुनाथ दास जी को बहुत डांटा, कैसे भक्त हो आप, राधा रानी को ही सेवा में लगा रहे हो, अभी तो कुटी बना लो। तो उसके बाद वो भजन कुटी बनी है जहाँ पर आज हम गए थे। अभी तो बहुत सुंदर हो गई, वो बहुत सुशोभित कर दी है, लेकिन बहुत सीधी सादी जो कुटिया है वो बनाई गई वहाँ पर। जैसे रघुनाथ दास जी के बहुत सारे लीलाएँ वहाँ पर है। हाँ, एक और लीला वहाँ पर हुई। क्या आप जानते हैं कि वो कितने विरक्त थे? एक चुल्लू भर छास 3 दिन में एक बार पीते थे और अपने आप को बहुत बड़ा भोगी मानते थे। तो एक दिन उनको स्वप्न में लीला में प्रवेश हुआ। देखिए कितनी सुंदर लीला है। तो स्वप्न में लीला में प्रवेश हुआ तो स्वप्न में वो अपने मूल स्वरूप में, मंजरी स्वरूप में प्रकट हुए राधा रानी की लीला में, और उसमें बहुत लीलाएँ हुई और बहुत सुंदर भोजन हुआ उस लीला में। तो उस लीला में बहुत सुंदर खीर का आयोजन था भोजन के लिए, और सखी के रूप में रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत ज़्यादा मात्रा में वो खीर पी ली। और जब दूसरे दिन स्वप्न में से उठे, उस जागृत हो गए, तो बहुत बीमार पड़ गए वो, बहुत पेट में दर्द हो रहा था उनके। तो अभी महाराज जी के पेट में दर्द हो रहा है तो सभी उनके पार्षदगण जो है दुखी हो गए। उन्होंने वैद्य को बुलाया, और वैद्य को बुलाया तो उसने उसकी नाड़ी देखी, तो वैद्य बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा खीर खाने का परिणाम है। तो सब लोग वैद्य को चिल्लाने लगे, अरे तीन दिन में एक बार इतना सा छाछ लेते हैं। तो वैद्य कह रहे, नहीं नहीं नाड़ी बता रही है कि बहुत सारी खीर खाई हुई है। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने सत्य को विदित किया कि कल रात को स्वप्न में ऐसे ऐसे हुआ, हमने बहुत ज़्यादा खीर खा ली। देखिए लीला में क्या स्थिति है और वास्तव में क्या स्थिति है। हाँ, तो ऐसे हमारे महान रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज, मैंने आपको वो शिला की कहानी बताई ना। हाँ, वो चैतन्य महाप्रभु को ब्रजवासियों ने भेंट दी थी, और वो शिला सतत चैतन्य महाप्रभु धारण करते थे। वो उन्होंने जब जाने का समय आया तो उन्होंने वो शिला और गुंजमाला उनको भेंट दी, जो अभी केशी घाट पे राधा गोकुलानंद मंदिर में है। ठीक है, ये बची हुई कहानियाँ थी। अभी हम कुसुम सरोवर गए थे, तो कुसुम सरोवर आपने देखा कितना भव्य सरोवर है, सबने फोटो निकाले ना कि नहीं, यस और नो? अरे बोल, क्योंकि वो जगह पे फोटो निकालने के लिए सारा कौशल्य हमारा निकलता है, क्योंकि इतनी सुंदर जगह बनाई है, इतनी सुंदर जगह बनाई है। तो वो जो पूरा कुसुम सरोवर है वो कुसुम वन में आता है। जब कुसुम सरोवर नहीं था तो कुसुम वन था वहाँ पर। कुसुम का अर्थ होता है फूल, और पुष्प वन भी कहते हैं उसको, और सुमन वन भी कहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु विशेष करके उसको सुमन वन के रूप में पुकारते हैं। तो वो सुमन वन में, नाम से ही पुष्प है ना उसमें, तो उसमें गोपियाँ पुष्प चयन करने के लिए आती थी। जैसे आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि पुष्प जो वस्तु है, यही भगवान की सेवा में कितनी महत्वपूर्ण है। भगवान की सेवा पुष्प से होती है, और पुष्प का कितना उसमें रोल है। तो सखियाँ जो है, जब भी पुष्प की लीलाएँ होती थी, उसमें एक प्रधान लीला है सांझी लीला। कितने लोगों को पता है सांझी लीला? सांझी लीला एक ब्रज की विशेष लीला है। यहाँ पर जब हमारा भारत वर्ष में सब जगह पर पितृपक्ष चलता है, तो ब्रज में पितृपक्ष वगैरह होता है, लेकिन उत्सव को कोई रोक नहीं सकता है ब्रज में। तो वहाँ पर सांझी लीला चलती है। सांझी लीला में पार्वती देवी का एक स्वरूप है, और उसको गोबर के सहायता से वो मूर्ति बनाई जाती है, जमीन पर या दीवार पर डेकोरेटिव, और उस पर फिर फूलों का श्रृंगार होता है। और सांझी नाम की एक वस्तु होती है जो जमीन पर रंगोली की तरह बनाई जाती है। हमारी रंगोली ज़्यादा से 2x2 फुट की होती है, लेकिन सांझी जो है अष्टकोनी 15-20 फीट के साइज़ की होती है। 15-20 साइड सब जगह पर अष्टकोन बहुत विशाल होती है। जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, वहाँ पर कैमरा है, उतनी सारी बड़ी वो सांझी होती है। और वो पहले 10 दिन जो है, वो पहले वो प्लेटफॉर्म होता है इतना बड़ा, इतना ऊंचा, उसमें ऊपर बहुत मोटा रंग स्तर बनाया जाता है गोबर का। और जब गोबर सूख जाता है तो उस गोबर के ऊपर सूखने के बाद में फिर फूलों का श्रृंगार होता है, और रंग बिरंगी बहुत विविध प्रकार का सुंदर रचना उस पर होती है। बीच में लीला भी बनाई जाती है, जैसे कि भगवान झूला झूल रहे हैं राधा रानी के साथ, या नौका विहार हो रहा है, या रत्न सिंहासन पर बैठे हैं, इस प्रकार का दृश्य होता है। और बहुत सारे अलग अलग दृश्य उसके बाजू में भी हो सकते हैं, होते भी है। ये मैं सांझी का आपको जितना वर्णन करूँगा ना, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको वो देखना चाहिए। जैसे हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन बार बार लिखते हैं कि मैं जो देख रहा हूँ वो लिख नहीं पाऊँगा, मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता जो यहाँ पर चल रहा है। ये सत्य है, कोई वस्तु ऐसी होती है जो प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद ही उसका गौरव समझ में आता है, उसका वर्णन करना वाणी के क्षमता के परे है। तो ऐसी ऐसी सांझी हमने देखी है राधा वल्लभ जी के मंदिर में, भट्ट जी के मंदिर में सबसे फेमस और सबसे कला संपन्न सांझी हमने देखी है। राधा रानी के मंदिर में भी बहुत विशाल सांझी होती है, जहाँ पर सखियों का निवास है वहाँ पर बहुत बहुत बड़ी बड़ी सांझियाँ होती हैं, और वो सांझी को पूजते हैं, वो सांझी देवी को उसको अर्पण करते हैं, उसकी आरती पूजा संध्या के समय होती है। दोपहर से 12 बजे से सांझी उत्सव की तैयारी शुरू होती है, जब भगवान को शयन करते हैं शायद राजभोग के बाद सांझी की तैयारी शुरू हो जाती है। बहुत सारी बड़ी संख्या में मात्र स्त्रियाँ गोपियाँ आती हैं, सांझी को सजाती है, और 4-5-6 घंटे लगाने के बाद फिर भगवान का उत्थापन होता है दोपहर में, फिर उसमें सांझी को भगवान को सांझी देवी को भगवान के सामने उसको अर्पण किया जाता है। बहुत सुंदर उत्सव है। जैसे झूला उत्सव में जब हम जाते हैं तो दोपहर को 3 बजे घर से निकलते हैं 3:30 बजे, और फिर झूला दर्शन करते 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 9 बजे लौट के आते हैं। और क्यों लौट के आते हैं? क्योंकि मंदिर बंद हो जाते हैं, और फिर भी एक दिन में कभी भी सारे झूला देख कर नहीं होते हैं, तो अगले दिन दूसरा दिशा में जाते हैं और वहाँ के झूला दर्शन करते हैं। वैसे ही सांझी में भी ऐसे होता है, जब सांझी उत्सव होता है 15 दिन का, तो उसमें हर रोज दोपहर को निकलना है 3:30 बजे, और 9 बजे तक केवल घूमना है बस, सब जगह पर यहाँ की झांकी वहाँ की झांकी, फोटो निकाल के आना है, प्रणाम करना है, कौन सी लीला का दर्शन है वो दर्शन देखना है। बहुत बहुत आनंद का उत्सव है ये, बहुत आनंद का। फिर नंदगांव में जाना है, फिर बरसाने जाना है, फिर और कहीं जाना है, सभी मंदिरों में अपनी अपनी सांझियाँ चलती रहती हैं। तो ये सांझी उत्सव 15 दिन का होता है, भद्र पूर्णिमा से आरंभ होता है और भद्र अमावस्या तक चलता है। पहले 10 दिन जो है वो फूलों की सांझी, और अगले 5 दिन रंगों की सांझी होती है, वो जो गोबर है उसके ऊपर रंगोली लगाई जाती है। तो ये सांझी उत्सव राधा रानी के समय से चल रहा है, और उसमें फूलों का चयन होता है, सब गोपियाँ मंत्रमुग्ध होकर ये फूलों का चयन ललिता देवी के आदेश से, वृंदा देवी के निर्देशन में इन फूलों का चयन होता है। ये सब डिज़ाइन संकल्पना ललिता देती है, और उसको कैसे कार्यान्वित करना है ये वृंदा देवी तय करती है। ये सभी सखियों कौन से फूल लाने हैं वो सब बता देती है, फिर सब सखियाँ फूलों को बीनने के लिए निकल जाती है। तो एक दिन क्या हुआ, सब ग्वाल बाल भाग भाग के कृष्ण के पास आए, और उन्होंने कृष्ण को कहा कि आज हमने सुना है कि फूल चुनने के लिए सभी गोपियाँ कुसुम वन जाने वाली हैं, तो हम जरूर वहाँ जाएंगे और उनको तंग करेंगे, क्योंकि हमें भी बहुत तंग करती रहती है। तो कृष्ण भी बड़े होशियार हैं, उन्होंने कहा कि आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं बहुत दूर तक नहीं जा पाऊँगा, और आप जाइए और अपना अपना जो करना है कर लीजिए। क्योंकि कृष्ण को पता था कि जब कृष्ण रहते हैं तो सब ग्वाल बाल दूर दूर तो जाते हैं गैया चराने के लिए, और जब कृष्ण नहीं जाते हैं तो पास पास में ही चरा कर लौट के आते हैं। क्यों, एनी आइडिया, उसका कारण क्या है? हाँ, अरे कृष्ण के बिना उनको रहा नहीं जाता है, तो कम से कम समय में उनको लौट के आके फिर कृष्ण को मिलना है। तो कृष्ण को ये पता है कि जब मैं नहीं जाऊँगा तो ये बहुत पास के वनों में जाकर लौट के आएंगे, तो ये सब चले गए ग्वाल बाल, और कृष्ण के मन में दूसरी योजना थी। जैसे ये चले गए तो कृष्ण जो है वो स्वरूप बदल कर कुसुम वन पहुँच गए, क्योंकि कृष्ण को पता था कि कुसुम वन तक दूर जाएंगे नहीं, और वहाँ कुसुम वन में सारी सखियाँ जो है वो फूल बिनने में लगी हुई है। मुझे बार बार ये बात मन में प्रभावित करती है, मुझे गोपियों का एब्सॉर्प्शन, गोपियों की मग्नता, गोपियों का मन की एकाग्रता, उनको जब बताया जाता है कि आपको पीले फूल चुनने हैं तो उनको पीले फूल के अलावा विश्व में और कुछ नहीं दिखाई पड़ता, और जब पीले फूल दिखाई पड़ते हैं तो पीले फूल बिनने में उनका चित्त इतना का एकाग्र होता है, इस कुछ समझ में नहीं आता उनको क्या चल रहा है और विश्व में। तो सारे जो जिन रंग के फूल बिनने को बताए गए हैं वो सारे गोपियाँ अपने अपने रंग के फूल बिनने में इतने मग्न है कि किसी को पता नहीं कि दूसरी गोपी क्या कर रही है, इतनी मग्नता से सारे फूल बिने जा रहे हैं बीच घने जंगल में पुष्पवन में। और अचानक वहां पर माली आता है डंडा लेकर ऐसे करते हुए, तो जैसे ही आवाज आती है तो सबका ध्यान थोड़ा भंग हो जाता है और वो देखते हैं कि दूर से ना बड़ी बड़ी मूंछों वाला बड़ा तगड़ा फेटा पहना हुआ लंबा चौड़ा शरीर का इतना बड़ा इधर तिल ऐसा पड़ा राइट साइड में और आंखों में ऐसे क्रोध और धोती और ऐसे बड़े जूते हैवी जिसको आवाज़ आ रही है चलते वक्त और चाल में ऐसी एक प्रकार की क्रूरता और बल का प्रदर्शन हो रहा है और डंडा पटकते हुए गले में ऐसे होता है ना लॉकेट आपने देखा है डाकुओं को देखा है ऐसा बड़ा लॉकेट होता है लंबी माला होती है किसी देवी की प्रसादी होती है वो ऐसे वो आ रहा है और उसकी ध्वनि जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ रही है अर्थात वो पास आ रहे हैं दूर के ध्वनि से जागृत हो गए थे और आता रही तो सब लोग ना भागने लगे वहाँ से और राधा रानी को पुकार रहे राधे राधे किशोरी भागो 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 माली आ रहा है। तो क्या हुआ था कि राधा रानी का जो पल्लू था ना वो सब कांटों में फंस गया था उनको पता नहीं था वो फूल बिनने में इतने व्यस्त थी तो ऐसा कुछ गांठ वांठ बना के झोली बनाई थी ऐसे उसमें फूल डाल रही थी और सारे जो उनके उत्तरीय वस्त्र क्या कहते हैं चुनरी थी सब जगह फंसी हुई थी। तो अभी जब ये भय निर्माण हुआ तो वो यहाँ वहाँ से उसको यहाँ निकाल रही तो यहाँ फंस रहा है यहाँ फंस रहा है तो यहाँ निकाल रहा है तो यहाँ फंस रहा है और उस प्रयत्न में भाल प्रदेश में बहुत श्वेत बिंदु इकट्ठा हो गए हृदय की धड़कन बढ़ गई यहाँ वहाँ देख के सांसें फूलने लगी और उस सारे प्रयत्न में क्या हुआ बिने हुए सारे फूल मिट्टी में गिर गए। अभी वो फिर भी निकलने का प्रयास कर रही है क्योंकि चलो फूल तो नहीं लेकिन मैं पकड़ी जाऊंगी तो वो दंड देंगे और उतने में वो जो माली था वो ऐसे बड़े माखे करके खड़ा हो गया ऐसा और बड़ी आंखों से कमर पे हाथ रखकर उसको देखने लगा। राधा रानी कांपने लगी और कांपने के बाद में अचानक उसमें स्माइल दिया तब राधा रानी को समझ में आया ये कृष्ण है। तो अभी मैं जो हिंदी में अभी तक मैं प्रयास कर रहा हूँ मेरे अभ्यास में इसके लिए क्या शब्द है मराठी में कहते हैं जीव भांड्यात पड़ला मतलब क्या बोलना हिंदी में जान में जान आ गई और क्या ओह आप हैं मैं तो डर गई थी लगा आप क्या होगा आज। अभी यही लीला जो है वो अनेक प्रकार से हुई है अनेक प्रकार से इसमें कृष्ण ने स्माइल दिया और राधा रानी पहचान गई ये कृष्ण है। अब यहाँ पर आप रुकिए दूसरे में कृष्ण आए और देखा कि इनके कांटों में कपड़ा सब फंसा हुआ है चुनरियाँ तो कृष्ण ने उनको छुड़ाया क्योंकि वो उस समय आए जब ही फूल बिनके हो गया था और उनको निकलना था तो राधा रानी को उस पे से निकलना नहीं हो रहा था तो माले के बेस में आते हैं और राधा रानी को उसमें कांटों से मुक्त करते हैं और भेज देते हैं और राधा रानी उतने संपर्क में इस माली को देखकर इतनी मोहित हो जाती है सखियों को मिलकर बताती है मेरा दिल बहुत उदास हो गया है मैं अभी उसको दोबारा मिलना चाहती हूँ सारा प्रसंग वर्णन करती है और कहते मुझे उसको मिलना है आप मुझे मिलाओ मैं तो अभी बहुत व्याकुल हो गई हूँ। तो सखियाँ फिर ढूंढ ढूंढ के वापस उसको मिलने आते कि राधा रानी उसको देखकर शर्माती है और ललिता सोच रही कि इसके माली के अंदर इतना क्या है हमारा हृदय तो श्याम सुंदर ने चोरी किया है और ये और किसी पर ऐसे कैसे मोहित हो गई। तो उसको गौर से देखने लगी ललिता तो उसके कमर में मुरली दिखी उसको तो मुरली खींच के निकाली और सब पेटा पेटा मुछी मुछी उतार दी उसकी और कृष्ण को प्रकट किया ये एक लीला है। दूसरी लीला में ऐसे आते हैं उनका झगड़ा होता है इसमें मैं जो पहले बताया तो राधा रानी डरी हुई है दूसरे में सब लोग वहीं खड़े हैं ललिता विशाखा राधा रानी। तो वो माली कहता है आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो मैं देख रहा हूँ सारे फूल यहाँ के खाली हो जाते हैं आज मैंने सोचा कि मैं पता ही कर लूँगा सारे फूल खाली कैसे होते हैं तो मैं पता चला मुझे आज कि आप लोग सखियाँ बरसाने से आती हो और सारा हमारा जो मैदान है फूलों को भरा हुआ वो खाली करके चले जाती हो। ये जो वन है आपको लगता होगा छोटा है ब्रैकेट में लिखा है हमारे आचार्यों ने 32 स्क्वायर माइल्स उसका एरिया ये जो राज्य है छोटा सा लगता है लेकिन कामदेव इसके राजा हैं और कामदेव ने मुझे नियुक्त किया गया है, नियुक्त किया है इस वन की रक्षा में, और आज मैं आपको कैद करूंगा और कामदेव के सामने प्रस्तुत करूंगा। ना आपने इस पेड़ों को लगाया है, ना जल दिया है, ना उसका सिंचन किया है, ना उसका परवरिश किया है, ना संगोपन किया है, और फल फूल लेने के लिए रेडीमेड आप वहां से आते हो, आप बड़े गुनहगार हो। तो ललिता कहती है, क्या प्रूफ है कि आप यहां पर रखे गए रखवालदार हो? बोले चलो दिखाता हूँ आपको, अरेस्ट करके दिखाता हूँ। फिर ललिता जी धीरे धीरे गोल गोल घूम के चर्चा करने लगती है। आप समझ में आए, ऐसे झगड़ा कर रहे हैं, तो ललिता यहाँ आती है, फिर वहाँ जाती है, चारों ओर देखती है, फिर वो मुरली छीन के निकालती है, और उनका जो भैरूपिया रूप है ना, ढोंग छद्म जो है वो फोड़ देती है। बहुत लंबी लंबी चर्चाएँ हैं। हमारे आचार्यों ने विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, इन्होंने अपने कृष्ण भावनामृत इसमें विस्तार रूप में इनके झगड़े लिखे हैं, विस्तार रूप में, राधा रानी और माली के बीच में नहीं, सारे सखियां एक एक करके बोल रहे हैं और कृष्ण उसको जवाब दे रहे हैं, कि सारी सखियां मिलकर वो माली के ऊपर झपक पड़ते हैं और उसका वस्त्र उतार कर उसको एक्सपोज कर देते हैं। तो एनीवेज अब पहली कथा में आते हैं। वो सभी अभी सब सखियां भाग गई है और कृष्ण राधा रानी केवल वन में है। तो राधा रानी कृष्ण को कहते ना कि जान में जान आ गई, और पूछते कि आज आपने ऐसा क्यों किया? तो कृष्ण ने कहा कि मुझे आज आपके साथ अकेले मिलना था, ना गोप चाहिए ना गोपियाँ चाहिए, केवल आपसे मिलना था। तो फिर पूछते हैं कि आप इन रोज फूलों को लेते हो, क्या करते हो? तो वो कहते हैं कि हम लोग माला बनाते हैं। अभी सांझी लीला की लीला और अलग है, हाँ सांझी लीला की टोटल डिफरेंट लीला है, लेकिन इसमें कई प्रकार की लीलाएँ जो हम कहते हैं ना कुसुम सरोवर में नित्य लीला होती रहती है, तो नित्य लीला में विविध प्रकार की ये कथाओं का प्रयोजन है। तो सांझी लीला की सीन में आ जाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि राधा रानी कहते हैं कि सांझी का उत्सव चल रहा है, तो हम लोग सब लोग ये फूल लेकर सांझी को सजाते हैं, तो अब कैसे करेंगे आप? तो कहते हैं हम लोग रोज इसको धोते हैं यमुना जी में, पहले कभी कभी गंदगी होती है, कभी नीर जाते हैं, तो चलो हम जाएंगे यमुना जी में। तो राधा रानी कहते हैं नहीं, आपके साथ अकेले हम यमुना जी कैसे जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे? तो कृष्ण कहते हैं कि आप चिंता क्यों करते हो, हम यमुना जी को ही बुला लेते हैं। तो कृष्ण ने अपने पैर से एक गड्ढा बनाया वहाँ पर कुसुम वन में, और यमुना जी को आह्वान किया, और एक विशाल सुंदर कुंड बन गया जिसका नाम है कुसुम सरोवर। फिर श्री कृष्ण भगवान ने उन फूलों को उस सुंदर कुंड के जल में धोया अच्छी तरह से, और जब राधा रानी फूलों को लेकर जाने लगी तो कृष्ण ने कहा कि मेरी एक इच्छा है आपसे, निवेदन है, क्या मैं इन फूलों से आपके बालों का श्रृंगार कर सकता हूँ? तो राधा रानी ने कहा ठीक है। फिर कुसुम सरोवर के किनारे में बैठकर कृष्ण भगवान ने राधा रानी के बालों को पहले संवारा है और उसका श्रृंगार किया है, और अभी हमको प्रूफ मिलता है कि उस समय भी आईना था, मिरर वॉज इन्वेंटेड एट दैट टाइम, क्योंकि राधा रानी के हाथ में आईना था, और वो जैसे हमारी घर में लड़कियाँ छोटी छोटी होती है ना, तो माँ उसके बाल बनाती है, वेणी बनाती है, तो छोटी लड़कियाँ वो आईने के सामने बैठती है और अपने आप को देखते रहते हैं, नहीं ठीक से रखो, ऐसे नहीं, जोर से मत करो, दुकरा ऐसे ऐसे वैसे, तो स्वयं को देखते रहते वो। लेकिन राधा रानी ने आईना क्यों रखा है? राधा रानी आईना कृष्ण को देखने के लिए रखा है, ऐसे पकड़ रही है वो, ऐसे नहीं देख रही है, ऐसे देख रही है, ऐसे पकड़ा है, तो उसमें कृष्ण का प्रतिबिंब देख रही है, क्योंकि वो श्रृंगार करने के लिए अपनी पीठ कृष्ण की ओर करके बैठी है, तो उतनी देर कृष्ण के मुख कमल का दर्शन के लिए वो व्याकुल है, वो नहीं रह सकती है, इसलिए वो श्रृंगार करते हुए कृष्ण के मुख कमल को आईने में देख रही है। हरि बोल। ब्रजवासी बताते हैं कि कुसुम सरोवर गोवर्धन का हृदय है, राधा कुंड श्याम कुंड उनकी आंखें हैं और कुसुम सरोवर उनका हृदय है। दूसरी लीला में क्या हुआ कि जब सखियां आई और वो माली से मिली और उसका छद्म भेद कर दिया, तो फिर वो सब लोग मिलकर कृष्ण से कहने लगे अभी हम यमुना जी आपके साथ नहीं जा सकते हैं। फिर भगवान ने यमुना जी को वहाँ बुलाया और सब सखियों ने मिलकर कृष्ण को मदद की राधा रानी के बालों का श्रृंगार करने के लिए। ये विविधता है भगवान की लीला में, कोई एक वाक्यता नहीं होती, हमेशा विविध प्रकार से लीला करते हैं। सांझी की लीला में क्या हुआ कि ये सब श्रृंगार हो रहा था, तो भगवान तो बड़े प्रेम से एकाग्र होकर श्रृंगार करते हैं, सब सखियाँ भी मग्न होकर राधा रानी के श्रृंगार के लिए कृष्ण को मदद कर रहे हैं, तो क्या होता है, सांझी की तैयारी में देर हो जाती है और बहुत देर होने के बाद सखियाँ कहती हैं अभी आप करते रहो, हम जा रहे हैं, हमारे घर में सांझी को लेट हो रहा है। तो सब सखियाँ निकल जाती है, वो कृष्ण श्रृंगार करते ही रहते हैं, वो सब सखियाँ सब भाग जाती है घर पे और अपनी अपनी सांझियाँ सजाने में व्यस्त हो जाती है। फिर राधा रानी का श्रृंगार पूरा होता है, कृष्ण दर्शन करते हैं सामने से, बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर राधा रानी कहती हैं अभी बहुत देर हो चुकी है, हमें जाना है अभी, मेरे सांझी का क्या होगा। कृष्ण कहते हैं कोई चिंता मत करना, आपकी सांझी सबसे पहले तैयार होगी। और कृष्ण श्यामा गोपी का रूप धारण करके बरसाना पहुंच जाते हैं और राधा रानी के घर में बहुत सुंदर सांझी बनाते हैं, और वो सांझी उस दिन की सर्वोत्कृष्ट सांझी थी। राधा रानी के आने के पहले राधा रानी की सांझी जो है वो बनकर तैयार हो गई, क्योंकि श्यामा सखी के रूप में जाकर कृष्ण भगवान ने वो सांझी को बहुत संपन्न किया। यह है कुसुम सरोवर, बहुत प्रकार की सुंदर सुंदर फूलों के विषय की लीलाएँ वहाँ पर हैं, और भी बहुत सारी लीलाएँ हैं, हो सकता है तो मैं बताऊंगा आपको। नारद मुनि जब राधा रानी का जन्म हुआ तब अपना गणित करके, और क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में चार्ट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, हाँ उसका नक्शा बनाया, नक्शा कुंडली नहीं, उनका जन्म कहाँ हुआ है उस लोकेशन का नक्शा बनाया, जिसको हम लोग GPS कहते हैं ना, GPS आप ढूंढते हो ना GPS को कि ये जगह पर है, डेस्टिनेशन रिसीव्ड, क्या कहते हैं, रीच्ड। तो वैसे उन्होंने अपना एक नक्शा बनाया अपनी दिव्य प्रेरणा से, और वो ढूंढते ढूंढते बराबर गोकुल रावल में आ गए जहाँ पर राधा रानी प्रकट हुई थी। और मैया बाबा को पूछा कि आपके घर में कोई कन्या हुई है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं हुई, क्योंकि उनको बड़ा संकोच था कि हमारी कन्या जो है वो ना बोल रही है, ना देख रही है, ना सुन रही है। नहीं, वो लंबी कहानी है। फिर नारद मुनि उनको बहुत सारे बताते हैं कि आप बिल्कुल संकोच मत करना, क्योंकि बाद में वो बता देती है, उनको लगता है सब सखियाँ पूर्णमासी आके बता देती है कि संतों के लिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम कैसे कहते हैं डॉक्टर और वकील के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, और तीसरे हैं गुरुदेव साधु जनों के सामने, क्योंकि वो क्या नहीं कर सकते हैं। तो आप इनको बताना कि हमारे घर में कन्या हुई है, ये समस्या, इसलिए हम बता नहीं पा रहे हैं आपको, और हमें बहुत धूमधाम से इसका जन्मोत्सव मनाना है, लेकिन हम मनाने में संकोच कर रहे हैं, जब पूरी जनता आएगी तो क्या दिखाएंगे, अंधी गूंगी बहरी लड़की को दिखाएंगे, इसलिए हमें बड़ा संकोच है, आप बताइए। तो नारद मुनि कहते हैं बड़े पहले तो खुश हो जाते हैं कि पहले नाम बोला था, और बाद में फिर राधा रानी का जो स्थान है वो पता चला, वहीं राधा रानी प्रकट हुई है भगवान की योग माया शक्ति, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा आनंदित हुए, दंडवत प्रणाम किया अनंत बार, और सबको कहा कि आपको उत्सव जरूर मनाना चाहिए, और इसकी आंखें खोलने के लिए एक ही उपाय है, वो ये है कि आप नंदगांव में निमंत्रण देना मत भूलना उसके जन्मोत्सव का, जाओ अभी सब तैयारी करो। तो सब लोग तैयारी में लग गए, सबको उत्साह आ गया कि अभी कोई अपने को दुख करने की इच्छा नहीं है, और सब कीर्ति मैया वृषभानु महाराज सारी गोपियाँ वो हैं वो बालिका को छोड़कर तैयारी में लग गई। और जैसे ही वो चली गई राधा रानी ने नारद मुनि को पूर्ण किशोरी रूप में दर्शन दिया, वो एक चित्रपट है ना ऐसे वैसे खड़ी है ऐसे दोनों हाथ करके, बहुत सुंदर चित्रपट है वो चित्रपट जैसा है वैसे वो दर्शन दिया 16 वर्ष के आयु में किशोरी अवस्था में। नारद मुनि बार बार बेहोश होकर बार बार उठकर बार बार दंडवत प्रणाम किया, जब संभले तो उन्होंने राधा रानी को कहा कि मुझे आपके अभी अष्ट सखियों के साथ दर्शन करना है। तो राधा रानी कहती है अभी रावल में घटना हो रही है, राधा रानी कहती है कि अभी आप कुसुम सरोवर चले जाओ, वहाँ पर आपको मेरे अष्ट सखियों के साथ दर्शन होंगे। अगर आप ध्यान से सोचते होंगे अभी तो कृष्ण का जन्म ही नहीं हुआ है, अभी जन्म जस्ट हुआ है और राधा रानी का अभी जस्ट हो रहा है, तो कुसुम सरोवर कहाँ से आ गया उस समय, तो मैंने कहानी बताई उसमें तो थोड़े से बड़े अवस्था में किशोर अवस्था में राधा और कृष्ण है और लीला कर रहे हैं तब कुसुम सरोवर प्रकट हो गया। तो आचार्य बताते हैं कि पारलौकिक दृष्टि से फ्रॉम द ट्रांसेंडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू ये सारे स्थान नित्य प्रकट रहते हैं, जब कृष्ण की इच्छा है तब ये लीला के लिए प्रकट हो जाते हैं, और लौकिक दृष्टि से ये फिर ऐसे लीला होकर प्रकट होते हैं। जैसे पारलौकिक दृष्टि से कृष्ण भगवान सदैव रहते हैं, लेकिन जब वो नैमित्तिक लीला करते हैं किसी निमित्त के लिए, तो यशोदा के गर्भ से देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं, फिर छोटे छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, गोकुल जाते हैं, गोकुल से नंदगांव जाते हैं, ये उनकी नैमित्तिक लीला है, उसका एक स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट। पटकथा शुरुआत से लेकर लीला के अंत तक, लेकिन लीला के पहले और लीला के बाद और लीला के बीच में नित्य लीला पीछे चलती रहती है। कृष्ण भगवान नैमित्तिक लीला में अभी काम्य वन में गौचारण कर रहे हैं, लेकिन कुसुम वन में नित्य लीला के रूप में नित्य भगवान राधा रानी के बालों का श्रृंगार कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? ये स्थिति है वृंदावन धाम की। वृंदावन धाम में अनेक स्तर पर अनेक प्रकार की लीलाएं सतत एक साथ चलती रहती है। यही वैचित्र्य है, लीला वैचित्र्य विचित्रता है लीला में, कि एक साथ में नित्य लीला चल रही है, एक साथ में भगवान बालक बनकर काम्य वन में गौचारण कर रहे हैं, किसी घर के माखन खा रहे हैं, एक ही साथ में भगवान गौचारण कर रहे हैं, ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं, दूसरे रूप में जाकर सिंधु नरेश की 3 करोड़ कन्याओं से विवाह करके काम्य वन में निवास कर रहे हैं, वहां रासलीला कर रहे हैं, ये सब एक साथ में होता है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर प्रश्न होने के पहले मैंने दे दिया। मैं तो कृष्ण पूछते हैं कि भाई जन्म हुआ और उसके पहले ही कृष्ण कुसुम समारोह कैसे तैयार हो गया, तो नारद मुनि कहते हैं कि रावल से नाचते कूदते बेहोश होते होते लोटपोट होते होते उठते हुए नाचते हुए गदगद होते हुए अश्रु बहाते हुए कैसे पहुंच गए गोवर्धन उनको ही नहीं पता चला। तो वहां जब पहुंच गए तो और बहुत सारी सखियां थी, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र और श्रृंगार किए हुए, उसमें से 2 सखियां सामने आई, माधवी गोपी और वृंदा देवी, और दोनों सखियों ने नारद मुनि को दर्शन दिया, नारद मुनि प्रणाम किया, नारद मुनि के नम्र और उत्सुक भाव से भक्ति भाव से बड़ी प्रभावित हो गई। तो वृंदा देवी ने नजरों से इशारा किया तो माधवी गोपी ने उन्हें दक्षिण कोने में कुसुम सरोवर के स्नान कराया। जैसे ही कुसुम सरोवर में स्नान कराया नारद की नारदीय गोपी में रूपांतर हुआ, नारद गोपी बनी। फिर माधवी गोपी वृंदा देवी ने मिलकर उस नारदीय गोपी का बहुत सुंदर श्रृंगार किया और नारदीय गोपी सज सज के तैयार हो गई। फिर माधवी गोपी ने उसका हाथ पकड़कर जो अदृश्य, क्या कहते हैं ब्रिज को हिंदी में, एक ऐसा दिव्य पुल है कुसुम सरोवर में, चारों तरफ से आप भी पानी के ऊपर से चल सकते हो और बीच में एक सुंदर कमल है हजारों पंखुड़ी वाला, उसके हेम पीठ पर रत्न सिंहासन पर राधा और कृष्ण विराजमान है। उसको नारदीय गोपी को वहां ले जाते हैं और वो हेमपीठ पर जो जुगल जोड़ी बैठी है रत्न सिंहासन पर, वहाँ उनके हाथ में चामर देकर नारदीय गोपी उन चांदवा से सेवा करती है। राधा श्याम सुंदर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, वो कहते हैं और वो कहते हैं कि अभी आप यहीं रहो, राधा रानी नारदीय गोपी से कह रही है आप यहीं रहो और हमारे विग्रहों के पूजन के विषय में शास्त्र लिखो, पंचरात्रि विधि के विषय में शास्त्र लिखो। तो नारद मुनि उनको कहते हैं कि मुझे 3 दिन के ऊपर मैं कहीं रुक नहीं सकता क्योंकि दक्ष राजा ने मुझे शाप दिया है कि 3 दिन के ऊपर आप कहीं रह नहीं सकते हैं। तो राधा रानी एक सुंदर जवाब देती है, वो सबको विचारणीय है, विचार करने योग्य है, वो ये है कि वो जो शाप आपको दक्ष राजा ने दिया है वो लौकिक जगत में अप्लीकेबल है, अमल करने लायक है, उसका अमल केवल भौतिक विश्व में रहेगा। ये तो मेरा निज धाम है, मेरे निज धाम में नारद मुनि का आपका दिया हुआ कोई शाप यहाँ पर कार्यान्वित नहीं हो सकता, आप निश्चिंत होकर यहाँ पर जितना समय रहना है उतना रहो। फिर नारद मुनि प्रसन्न होकर वहाँ से आए और फिर वृंदा देवी माधवी गोपी ने उनको हाथ पकड़कर उसी कोने में लाया, फिर नहलाया, तो फिर नारद मुनि को अपना पुरुष शरीर प्राप्त हो गया, सदिव्य दर्शन प्राप्त करके वो धन्य हो गए और फिर अपनी वीणा लेकर नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नाम ऐसे करके आगे चले गए। आज हम गए ना कुसुम सरोवर के आगे तो हम श्याम कुटी में गए, उसके बाद में ग्वालपोखरा में गए, वो लेफ्ट दिशा में गए, हम लोग राइट में गए। लेफ्ट में गए तो वहाँ पर एक जगह पर रुके, वहाँ पर भजन किया और नारद पांचरात्रि की विधि के ऊपर उन्होंने ग्रंथ लिखा, उस जगह का नाम है नारद कुंड। नारद कुंड पे रहकर नारद मुनि ने पंचरात्रि की विधि के ऊपर ग्रंथ लिखा है। तो कल हम वहाँ पर दर्शन करेंगे नारद कुंड का, तो आपको कथा भी बता दी पहले से है ना। दूसरी कथा, वही कथा की कई प्रकार से हुई है। नारद मुनि अभी जन्म का राधा रानी को कोई संबंध नहीं, ऐसे ही घूमते घूमते कुसुम सरोवर गए तो वहाँ पर उनको वृंदा देवी का दर्शन होता है और माधवी गोपी का, वही 2 गोपियाँ। तो नारद मुनि के उत्सुकता को देखकर फिर वो उनको नहलाती है, गोपी बनाती है, और वहाँ पर कुसुम सरोवर के बगल में एक सुंदर महल है, बहुत दिव्य महल, प्रकाशित तेजस्वी महल है, उसमें उस नारदी गोपी को श्रृंगार करके ले जाती हैं। उस महल में कई कक्ष हैं, ऐसे एक दालन है, उसके पीछे अंदर एक और गुप्त दालन है, उसके अंदर और एक अंतरंग, ऐसे करके बहुत दालन है। तो उनको कुछ गोपियों को पहले मिलाते हैं, और गोपियाँ क्या करती है, जो पहले दालन में गोपियाँ हैं वो सब मिलकर नारद मुनि को बड़े प्रेम से आलिंगन देती है, इतना प्रेम से आलिंगन देती है कि सारा भाव ट्रांसफर कर देती है। फिर उनको अगले कक्ष में लेके जाते हैं, वहाँ पर और अंतरंग गोपियाँ हैं, वो नारद गोपी को बड़े प्रेम से आलिंगन देती है। तो आप समझ रहे हैं ना, जैसे कमल कैसे होता है, उसके दूर पंखुड़ियों में सब गोपियाँ खड़ी हैं, फिर अंदर के पंखुड़ियों में, फिर अंदर के पंखुड़ियों में, फिर आप अष्ट सखी के पंखुड़ियों में बीच में सर्कल में आएंगे, और फिर राधा कृष्ण का दर्शन हुआ। ऐसे वो कमल की योजना होती है। तो ऐसे ऐसे जो सखियाँ हैं वो सब लाइन में खड़ी है वहाँ पर, और एक एक कक्ष पार करते हुए सब लोग उसको एक ही काम करते हैं, बहुत धुआंधार आलिंगन देते हैं प्रेम से। संध्या के समय सोना अशुभ माना गया है, इसलिए आप सब लोग ऐसे टेक के ऐसे मत कथा सुनिए, ऐसे बैठिए जैसे मैं बैठा हूँ। हाँ, ये संध्या के समय पर शिवजी महाराज अपने गणों के साथ में वातावरण में घूमते रहते हैं, और उस समय पर जो सोते हैं उनकी मति पर वो दुष्परिणाम करते हैं, इसलिए आप सब लोग सावधान बैठिए। इसलिए संध्या के समय पर घी का दीपक जलाकर आरती होती है, घंटी बजाई जाती है, शंख बजाया जाता है, ताकि ये सब जो भूतगण प्रचारगण हैं वो चले जाएं। शंख जो बजाते हैं ना, उसका एक उद्देश्य ये होता है कि शंख की ध्वनि इतनी दिव्य होती है कि उसमें ओमकार निकलता है, तो उस ध्वनि का उच्चार यानी उत्पन्न करने से जो भी आसपास में भूत प्रेत घूम रहे हैं वो सब भाग जाते हैं। घंटी बजाने से भी ओमकार का निर्माण होता है, उससे भी भाग जाते हैं, और घी का दीपक और गाय के गोबर का जो धूप बनाते हैं उससे भी ये सब भाग जाते हैं। अशुभता नष्ट होती है और शुभता निर्माण होती है। ये संध्याकालीन कार्य क्यों कहा गया, इसमें गायत्री जप भी करते हैं, संध्या वंदन भी करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, आरती करते हैं, कीर्तन गाते हैं, ताकि ये दुष्परिणाम का हमारे ऊपर प्रभाव न हो। और इस काल में जो सोता है वो उसे इतना उदास लगता है, उसके बाद में कुछ कार्य करने की इच्छा नहीं होती। हमारे घर में बचपन से कहा गया है कि इस समय पर सोना नहीं कभी भी, कितना भी थके हो बीमार हो तो भी उठकर थोड़ा सा घूम के आना है और देखना है, बाहर जाकर सूर्य को अस्त होते हुए देखना है, ऐसे शास्त्र का विधान है। एनीवेज, सॉरी फॉर डाइवर्जन, उसको कहते हैं संधिकाल उपाख्यान। तो मैं कहाँ था, तो वो आलिंगन करते 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 अंतरंग कक्ष में पहुंचे। अभी अंतरंग कक्ष में केवल ललिता विशाखा है और राधा और श्याम सुंदर है। तो जैसे ही नारदी गोपी को अंदर प्रवेश मिलता है, राधा और कृष्ण दोनों मिलकर उसको आलिंगन देते हैं, और बहुत देर तक उनकी सुंदर सुंदर एक एकांतिक प्रेम लीला चलती है। उसके बाद में उसी क्रम से नारदी गोपी को बाहर ले आते हैं, और पूरे बाहर आने के बाद में फिर दक्षिण कोने में कुसुम सरोवर के उनको स्नान कराते हैं, और फिर नारद मुनि अपना पहला वाला वेश धारण करके गाते गाते चले जाते हैं। इसी चक्र में एक बार नारद मुनि कुसुम वन के अंदर, एक और एक वन है, बहुत सारे वन है, एक वन है अशोक वन, सारे अशोक के वृक्ष है उसके अंदर। नारद मुनि एक अशोक वन वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं, और अपने ध्यान में क्या देखते हैं, संध्या का समय था, अंधेरा हो चुका था, ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान करते हुए देखते हैं अपने ध्यान में दृष्टांत में कि सारे अशोक वृक्ष जो हैं वो गोपियां बनकर श्रृंगार करके सज धज के रास में भाग रहे हैं, रास में प्रवेश कर रहे हैं। नारद मुनि की अचानक आँख खुलती है, तो देखते हैं कि उन जो वृक्ष के नीचे वो बैठे हैं वो वृक्ष भी गोपी बनकर रास में प्रवेश कर रहे हैं। ये सुंदर दर्शन नारद मुनि को हुआ है। ये भी एक प्रमाण है इस लीला के माध्यम से कि ये सारे वृक्ष गोपियाँ भी हैं। हमको पता नहीं चलता कौन सा वृक्ष गोपी है, कौन सा वृक्ष साधु है, कौन सा वृक्ष कल्प वृक्ष है, कौन सा राधा रानी है, वी डोंट नो। ये विविध प्रकार के वृक्षों की लीला है। तो नारद मुनि के इस लीला से हम समझ सकते हैं कि सारे वृक्ष जो है, अर्जुन के, अशोक के, जिस प्रकार के वृक्ष हम देखते हैं सब राधा रानी की सखियाँ हैं। फिर कुसुम सरोवर पे अभी हमको प्रवेश नहीं मिलता है वहाँ पर, तो हम लोग आगे जाकर छतरी में बैठते थे। राजा सूरजमल के द्वारा बनाई गई छतरी है वो, और उसमें उनके वहाँ हवा महल जैसे स्थिति है, बहुत सारी छतरी बनी ना, बीच में राजा बैठे हुए हैं, बाकी बहुत छतरी में रानियाँ बैठी हुई है, और ठंडी गर्मी के समय पर जल के ऊपर से ठंडी हवा आती है, उसका आस्वादन कर रहे हैं सब लोग, उनकी सेवा करते हैं। तो वो वहाँ पर हम जाते थे, तो उसमें दो प्रमुख स्थान है, एक प्रमुख स्थान है बलराम जी का मंदिर। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि बलराम जी का मंदिर कुसुम सरोवर में क्यों है। इसका कारण यह है कि कुसुम सरोवर से, मैंने जब सुबह आपको कल बताया था शाम को, ये कुसुम सरोवर से राधा कुंड का घेरा आरंभ होता है, राधा कुंड सर्कल आरंभ होता है। कुसुम सरोवर के एग्जैक्टली अपोजिट में उद्धव कुंड है, वो भी वहीं से शुरू होता है। तो ऐसे जो यू है ना, यू वो पूरा बीच में गोवर्धन है, जमीन में लुप्त है, लेकिन वो पूरा जो विभाग है वो राधा कुंड का घेरा है। वहाँ से राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाएँ, अति उत्कट केवल माधुरी लीलाएँ आरंभ होती है, और उसमें ना यशोदा को प्रवेश है, नंद महाराज को प्रवेश है, ना बलराम जी, ना ग्वाल बाल, ना गैया, किसी को प्रवेश नहीं है। लेकिन बलराम जी ऐसे विभूति है कि उनको राधा कृष्ण के अंतरंग लीलाओं का दर्शन करने की बहुत तीव्र अभिलाषा है, इसलिए वहाँ पर वो गुप्त रूप में बैठे हैं और ऐसे छुप के देख रहे हैं कि राधा कुंड पे क्या हो रहा है। ये भाव है उनका कुसुम सरोवर पे, उस भाव से बलराम जी वहाँ विराजमान है और उसी भाव में उनकी पूजा होती है। ऐसा ही एक स्थान हमारे गोवर्धन परिक्रमा में आएगा, इसका नाम है ढोका दाऊ जी। वहाँ पर भी बलराम जी छुप कर, भाव विभोर होकर, स्तब्ध और क्या कहते हैं उसको, स्तंभ विकार में आकर भगवान के चंद्र सरोवर की रासलीला का दर्शन कर रहे हैं। उसके आगे एक जगह है, उसका नाम है उद्धव बैठक, वो उद्धव जी के बैठने का स्थान है। उसी के ऑपोजिट साइड में गोवर्धन के उद्धव जी की तपस्थली है उद्धव कुंड, जहाँ पर उद्धव जी ने तप किया था। भी मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ, क्योंकि बहुत बहुत लंबी और गहरी लीला है ये, बहुत उत्कट लीला है, और उसमें श्री कृष्ण लीला का जो सर्वोत्तम स्थान है, सर्वोच्च प्रकार का जो विरह लीलाओं का जो प्रसंग है और वो भाव है, उसका इसमें प्रकट्य होता है। और नंदागांव के लोग भी ये सुन के आठ आठ दिन का नाटिकाएँ देखते हैं। नंदगांव में आठ घंटे की आठ दिन की लीला होती है केवल उद्धव जी इस विषय पर, और आठों दिन आठों घंटे सारे ब्रजवासी नंदगांव के फूट फूट कर रोते हैं, इतना हृदय दावक प्रसंग है ये उद्धव जी का। तो संक्षेप में उद्धव जी को भगवान कहते हैं कि भगवान भेजते हैं और उद्धव जी संदेश देते हैं सबको, माता पिता को, ग्वाल वालों को, गैयाओं को, और आखिर में गोपियों को मिलते हैं। तो गोपियाँ कहते हैं कि हम, हमारा जो हृदय का भाव है या प्रतिसाद है जो आपको, आप बता रहे हैं उसके विषय में जो कहना है वो ये जनता में नहीं कह सकते, हम आपको एकांत में ले जाना चाहते हैं। तो उनको बीच जंगल में लेके गए, वहाँ पर गोपियों ने उनके लिए एक पत्थर का आसन बनाया, उनको बिठाया, और पहले उद्धव जी ने अपना पत्र पढ़ा कृष्ण के द्वारा लिखा गया, और उसके जवाब में फिर गोपियों ने ऐसे जवाब दिए बहुत तीव्रता से ताने मारे कृष्ण को। फिर बहुत कठोर बोलने के बाद में अपने कठोर बोलने के कारण वो रोने लगी कि हमने कठोर इतने कृष्ण के लिए क्यों बोला, फिर रोने लगी, फिर कृष्ण की याद करने लगी, फिर कुछ हंसने लगी, कुछ जमीन पर गिरने लगी, कुछ रोने लगी, कुछ जमीन पर लोटपोट होने लगी, कुछ नृत्य करने लगी, ऐसे अलग प्रकार के अचिंत्य, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, इनको दुख है कि खुशी है कि क्या है समझ में नहीं आ रहा है। उद्धव के दिमाग के परे था ये सब जो देख रहे थे वो, कभी उनको इस बात के विषय में ज्ञान नहीं था। तो एनीवे, तो ये बहुत लंबी लीला है, लेकिन उसके बीच में उद्धव जी को एक समझ में आया कि ये जो प्रेम है ये मेरे बस की बात नहीं समझना, मैं जो भी कुछ बृहस्पति महाराज से, देवगुरु से जो भी अध्ययन किया, सब शास्त्रों को मैं पारंगत हूँ, बृहस्पति की मुझ पर कृपा है और सब शास्त्र का सार मैं जानता हूँ, और वो बड़े विद्वान थे, लेकिन कृष्ण को लगा कि इन्हें गोपियों की पाठशाला में भेजकर उच्च शिक्षण देना चाहिए, इसलिए वो उद्धव जी को संदेश भेजने का बहाना बनाया उन्होंने। और उद्धव जी को वो देखकर पता चला कि मेरे को लगता है जो मुझे ज्ञान है वो जीरो है ज्ञान, ये तो वेद पारंगत लगती नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो ज्ञान और प्रेम है वो मेरे लिए अकल्पनीय है, कल्पना के परे है, मैं समझ नहीं सकता इसको। तो मैं तो सांत्वना करने आया था, क्या सांत्वना करूं इनकी मैं, मेरे को समझ में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है सब, किन शब्दों से सांत्वना करूं, मैं तो योग सिखाने आया था उनको। और योग का तो वो कह रही है, देखो योग को कैसे फेल कर दिया, तो योग पढ़ाने के लिए वो सोच कर आ रहे हैं। तो गोपियां यमुना के धारे ध्यान में बैठी हुई, तो उद्धव को लगता है अच्छा है, कुछ ट्रेनिंग तो है पहले से, बेसिक ट्रेनिंग तो आगे का मैं दे दूंगा उनको। तो वो पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या किसका ध्यान कर रहे हो? तो वो उनको एक अद्भुत अकल्पनीय अचिंतीय अचिंतनीय उत्तर देते हैं। वो कहते हैं वो जो कन्हैया थे वो टेढ़े हैं, हमारा हृदय सरल था, लेकिन उसने हमारा हृदय इतना आकर्षित कर लिया कि उनको हृदय में बसाने के लिए हमने हमें हृदय को टेढ़ा कर दिया और हृदय में बस गए। जब बस गए तो बीच में छोड़ के चले गए। अभी उनको बड़ी पीड़ा हो रही है क्योंकि अभी भी हृदय में है, तो हम चाहते हैं कि इनको हृदय से एक बार निकाल दें तो इस पीड़ा से मुक्त हो जाएं। तो हम इन हृदय में बसे हुए जो सही स्ट्रेट नहीं है, इसको कहते हैं ना क्रुकेड, उस कृष्ण को निकालने के लिए योग कर रहे हैं। अभी बाकी समय में योग में क्या होता है, जो हृदय में बसे नहीं है परमात्मा, सब जगह चराचर में समाये हुए हैं, उनको हृदय में अनुभूति करने के लिए, हृदय में बसाने के लिए हम योग करते हैं। योग का अल्टीमेट गोल है कि परमात्मा कृष्ण को वहाँ पर अनुभूति की जाए, और ये इनके हृदय में ऐसे बसे हुए हैं वो निकालने के लिए योग कर रहे हैं। ऐसा योग तो उन्होंने नहीं पढ़ा था कभी, तो वहीं पर सारा योग का ध्यान उनका जो है वो यज्ञ ज्ञान भ्रष्ट हो गया उनको। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, आप बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि आपका सारा नॉलेज जीरो हो जाता है। डॉक्टरों को पता है ICU में और ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है, सब कुछ पता है आपको नॉलेज, लेकिन उस समय जो हो रहा है आपके सामने कोई उपाय नहीं है, चमत्कार ही उसको पार कर देता है। तो वैसे सारा योग का ज्ञान भ्रष्ट हो गया उनका। अभी वो जो डॉक्टर बन के आए थे गोपियों को इलाज करने के लिए, वो शून्य हो गए यहाँ से, क्योंकि उनको समझ में आया कि इनके पास जो है वो मेरे लिमिट के सीमा के परे है। लेकिन सांत्वना तो करनी थी उनको, तो भगवान ने आदेश दिया था। तो उन्होंने क्या देखा कि जब भी ये कृष्ण के विषय में बात करते हैं तब ये अपने आप सांत्वना पाते हैं, हंसने लगते हैं, बोलने लगते हैं, नाचने लगते हैं और इतने उत्साह से कथाएं भगवान की बताते हैं। तो उन्होंने सांत्वना देने का एक अद्भुत तरीका ढूंढ के निकाला, चुप रहना और सुनना, जो काउंसलिंग का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, लिसन, डोंट जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग बिकॉज यू नो। तो उन्होंने सोचा, दो दिन के लिए आए थे वो, मैसेज देकर लौट के जाना है, हो सकता है एक रात का बसेरा है, दो दिन लौट के जाना है। 6 महीने ब्रज में रहे उद्धव जी, क्यों देख रहे थे कि गोपियों को बड़ा उत्साह था उनको सब जगह ले जाने का, कि यहाँ हम खेले, यहाँ पर नदी में कूदे, यहाँ पर तालाब में जल क्रीड़ा किया, यहाँ नौका विहार किया, यहाँ मक्खन चुराया, इस घर में ऐसे हुआ, उधर ये हुआ, ये वन में ये किया, उनको सब बताना था। और अद्भुत सभा थी वो, इस सभा में 200 लोग श्रोता बैठे हुए, एक वक्ता बोल रहा है, उसमें करोड़ों वक्ता बोल रहे हैं, एक श्रोता, एक यात्री यात्रा कर रहे हैं। विचार कीजिए आप, एक यात्री को सारी गोपियां वही कहानी अपने अपने एंगल से बता रही हैं, क्योंकि हर एक का अपना एंगल होता है। आप एक दुर्घटना देखते हो तो आंखों देखा हाल 4 लोग रिपोर्टर को अलग अलग बताते हैं, मैंने एक खिड़की से ऐसा देखा, उसने देखा, यहां से दिखाई नहीं पड़ा, वहां से दिखाई पड़ा। तो इस प्रकार से एक ही लीला का जो अपनी अपनी अनुभूतियां हैं वो सब गोपियां अपने अपने अंदाज में एक ही लीलाओं को उसको बता रहे हैं एक स्थान पे। ऐसे ब्रज के सारे स्थान में ले गए वो, पूरी ब्रज की यात्रा के 6 महीने, और आगे वर्णन आता है 6 महीने के बाद राधा रानी बोलती है, जा तुम्हारा छलिया तुम्हारा इंतजार करता होगा, नाउ यू कैन गो। वही तुम्हारा जो छलिया है तो तुम्हें याद करता होगा, कहाँ गए उद्धव जी, 2 दिन में आने वाले थे, अभी जाओ जल्दी जाओ, उसे उनको भेज दिया। क्या अवस्था हो गई उद्धव जी पूरे ऐसे ना ऐसे विस्मयचकित हो गए थे कि मैं कौन से अनुभव से गुजर रहा हूँ, और आनंद भी बहुत आ रहा है लेकिन बहुत ही भौचक के रहने वाला अनुभव था वो, और पूरी तरह से संपृक्त होकर कृष्ण प्रेम के विषय में, नवीन विषय में पूरा ज्ञान अनुभूति गोपियों को मिलकर, ऐसे विभूतियों को मिलकर पूरी तरह प्रभावित होकर वो लौटे और कृष्ण को पूरा रिपोर्ट दिया और बोले अभी मैं जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहे हो? वृंदावन जा रहा हूँ। अभी कब वृंदावन जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैंने देखा इस प्रकार के गोपियों का प्रेम भाव है और मुझे पता चला कि मुझ में ये बिल्कुल एक कण मात्र भी नहीं है, मैं बिल्कुल ज्ञानी हूँ, शुष्क ज्ञानी हूँ, तो मैंने सोचा कि अगर ये इतनी महान विभूतियाँ हैं, आपने, अब मुझे लगा कि मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है, तो मुझे लगा कि मुझे इनकी चरणों की रज लेनी चाहिए ताकि इनके भाव का एक कण प्राप्त हो। लेकिन मैंने देखा वो इतनी नम्र और इतनी सीधी सादी, इतनी सिंपल गोपियाँ हैं, और मैं तो राज क्या है राजकीय व्यक्ति हूँ ना, मैं आपका मंत्री हूँ और मथुरा के राज्य में मंत्रणा भी करता हूँ, आपका चचेरा भाई भी हूँ, आपका मित्र भी हूँ, आपका सखा हूँ, आपका सखा निकट का व्यक्ति हूँ, तो मेरा एक पोजीशन है, तो उस पोजीशन, उस स्थान को, उस सम्मान को देखते हुए वो अपने चरण की रज मुझे नहीं देंगे, ये भी मुझे अनुभूति हुई। और मुझे ये भी लगा कि इन महान विभूतियों को किसी प्रकार का संकोच नहीं देना चाहिए, किसी प्रकार का ऐसा विनती नहीं करनी चाहिए कि आपके चरण कमल दो मैं आपको दंडवत करना चाहता हूँ, तो बहुत संकोच में आ जाएंगी वो, उनका सहज भाव नष्ट हो जाएगा। तो फिर मैंने देखा कि मुझे 6 महीने उन्होंने वन में घुमाया, तो ये घास के ऊपर बड़े आसानी से चल रही थी, उनको कोई परेशानी नहीं थी, कोई संकोच नहीं था। तो तभी मेरे मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि मुझे घास का पत्ता बनना चाहिए, फिर वो सहज मेरे ऊपर चलेंगी तो उनकी चरण रज के स्पर्श से मेरे हृदय में, मेरे मन में, बुद्धि में ये प्रेम का, भक्ति का विकास होगा और प्रकाश होगा। तो मैं जा रहा हूँ, क्या करोगे? तपस्या करूँगा घास के पत्ते का जन्म प्राप्त करने के लिए। तो उद्धव जी कुसुम सरोवर में आए और उन्होंने वहाँ पर तप किया और घास के पत्ते का जन्म प्राप्त किया, जिसको गुल्मलता कहते हैं, और गुल्मलता के रूप में अभी भी वो कुसुम सरोवर के किनारे में विराजमान है। और फिर उन्होंने उस रूप में सहजता से गोपियों के चरणों की रज प्राप्त की है, और ये प्रेम का जो दिव्य रहस्य है, जो बृहस्पति की पाठशाला में सीखने को नहीं मिला, वो उन्होंने प्राप्त किया। तो ऐसे दिव्य अनुभूतियाँ उद्धव जी को कुसुम सरोवर गोवर्धन वृंदावन में प्राप्त हुआ। तो वो बैठक है, वो उस बैठक के पीछे और भी एक रहस्य है। उसके आगे तपस्थली जहाँ पर तप किया, उसको कहते हैं उद्धव कुंड, वहाँ पर भी हम जाएंगे परिक्रमा में। लेकिन जो बैठक है उसके पीछे और एक राज है, वो ये है कि जब कृष्ण भगवान अंतर्धान हो गए तो उनको पता था कि सब रानियाँ बहुत ही क्या कहते हैं दुख में आएंगी, विरह में आएंगी, तो उन्होंने राजा परीक्षित और अपने प्रपौत्र वज्रनाभ को बता दिया था कि मुझे पता है मेरी रानी बहुत दुखी होंगी, रानियाँ सब मिलकर, उन्हें आप लेकर ब्रज में जाना और उद्धव जी को मिलाना। तो उद्धव जी को, सॉरी, वज्रनाभ जी और परीक्षित जी इस सारी 16,108 रानियों को, रोती बिलखती हुई रानियों को लेकर ब्रज में आए। उसमें जमुना जी भी उनकी एक सौतन है, चौथी पत्नी भगवान की, लेकिन जमुना जी ब्रजवासी है, ब्रज में रहती है और भगवान की पत्नी के रूप में वहाँ पर भी रहती है। तो जब ये आई, पहले तो जमुना जी का दर्शन किया, तो जमुना जी तो जोर जोर से ऐसे उछल रहे जैसे कि आनंदित है। तो उन्होंने प्रश्न किया, हम तो रो रही है, हम भी आपकी सौतन है और आपको दुख नहीं हो रहा है? तो वो कहते हैं कि हम है ना ब्रजवासिनी, राधा रानी के अंश हैं, इसलिए हमारे जीवन में विरह भी होगा या संग भी होगा, लेकिन दुख नहीं होता है, हम आनंद में रहते हैं। तो रानियों को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो ऐश्वर्य वाली रानी है ना, वो द्वारका वाली है, उनको ये विषय में ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि आप कुसुम सरोवर जाइए, वहाँ पर उद्धव जी मिलेंगे आपको, वहाँ पर जोरदार कीर्तन कीजिए आप भगवान के नामों का, फिर उद्धव जी वहाँ से प्रकट होंगे, आपको दर्शन देंगे और फिर आपका आगे का काम वो करेंगे। तो सब रानियाँ वहाँ से लेकर आए, विद परीक्षित जी और वज्रनाभ जी, और उन्होंने, सब रानियों ने मिलकर बहुत सुंदर नाम संकीर्तन किया है कुसुम सरोवर के किनारे, और उस नाम संकीर्तन के प्रभाव से गोलमलता के रूप में जो उद्धव जी थे वो पुरुष रूप में, मनुष्य रूप में प्रकट हो गए, और उन्होंने वो रोती रोती हुई रानियों को बिठाया, उद्धव बैठक पे वो बैठे और कुसुम सरोवर के किनारे पे 1 महीने तक भागवत कथा की उन्होंने, क्योंकि परीक्षित को समय की पाबंदी थी, 7 दिन के अंदर ही तो सुनना है, लेकिन उद्धव जी और रानियों के बीच में कोई समय की पाबंदी नहीं थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि प्रथम श्लोक का उद्धरण उद्धव जी ने करते हुए रानियों का सारा दुख समाप्त हो गया। रानियाँ क्यों रो रही है? कृष्ण से विरह में रो रही है, कृष्ण नहीं है इसलिए रो रही है, और रोना बंद क्यों हुआ? उनको कृष्ण का होने का अनुभव हुआ तत्काल। इसका अर्थ क्या हुआ? श्रीमद् भागवत स्वयं कृष्ण है, श्रीमद् भागवत का उच्चारण शुरू करते ही कृष्ण के उपस्थिति का अनुभव हुआ उनको, और 30 दिन तक वो कभी रोई नहीं। दशम स्कंद में अपना ही दर्शन किया उन्होंने। अभी देखो उद्धव जी कथा कर रहे हैं, तो साथ में एक स्क्रीन भी लगा हुआ उधर, उधर लाइव लीला भी चल रही है, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं आपको। लेकिन उद्धव जी कथा कर रहे हैं और कथा जो है उनको साक्षात दृष्टि में दिखाई पड़ रही है, दृष्टांत तो हो रहा है साक्षात, वो भी देख रहे हैं और बता रहे हैं, ये भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं। इट्स लाइक ऑडियो विजुअल, हमारी कथा खाली ऑडियो है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन लीला आपको केवल वाणी में सुनाई पड़ रही है। उनको दर्शन भी हो रहा है उसका। सारी रानियों ने पूरी कृष्ण लीला, नैमित्तिक लीला जो है कृष्ण के जन्म से लेकर, सारी लीलाओं का वर्णन सुना, अपना भी लीलाओं का दर्शन किया कि उनका विवाह हो रहा है, वो द्वारका में महल में प्रवेश कर रहे हैं, उनके साथ में जो लीला हो रही है महलों में, नारद मुनि आ रहे हैं, सब कुछ देखा उन्होंने। और दशम 12वें स्कंद के अंत में वो अपना रूप जो उन्होंने देखा था उद्धव जी की कृपा से, वो अपने ही रूप में विलीन हो गए रानियां, उस तरह से रानियां भगवत धाम चली गई। दिस इज हाउ श्री कृष्णा अरेंज्ड फॉर ऑल द क्वींस टू गो बैक टू गॉडहेड। अपने धाम में अपने पत्नियों को लेकर जाने के लिए भगवान ने ये लीला रची उद्धव जी के माध्यम से, और ये सब कुसुम सरोवर के किनारे हुआ है। बताओ आप उस धूप में खड़े होकर सुनने के लिए पर्याप्त स्थिति थी क्या उधर? आप इतना सब सुन पाते वहां पर धूप में खड़े होकर? इसलिए कहा कि हम शाम को बताएंगे। इतनी सुंदर लीलाएं हैं, बहुत सुंदर। और एक लीला है वहां पर, अष्टावक्र मुनि जो है, आप जानते हैं अष्टावक्र मुनि को? उनके शरीर में ना उसके शरीर में 8 प्रकार के वक्र थे, 8 प्रकार, अभी ऑर्थोपेडिक लोग समझ सकते हैं उसको, 8 डिफरेंट डिफॉर्मिटीज। वो चलते भी ऐसे 4 पैर पे ऐसे ऑक्टोपस की तरह चलते थे वो, लेकिन महान महान विभूति है वो। वहाँ पर उन्होंने तप किया है कुसुम सरोवर पे। तो एक बार एक सॉरी दो वो और श्री कथा है, कोई बात नहीं। तो अष्टावक्र मुनि को श्री कृष्ण भगवान में उनकी परिपूर्ण अवस्था में कुसुम सरोवर के किनारे दर्शन दिया है, और वहीं से अष्टावक्र मुनि गौलोक धाम चले गए। ये भी वहाँ की लीला है। अभी इस समय की लीला, 150 वर्ष पहले वहाँ पर राजस्थान के राजाओं का कंट्रोल था संस्थानिक के रूप में। तो राजा जो है वो ऐसे आते थे चक्कर लगाने के लिए राजस्थान से। कई कई अभी भी मंदिर जो है राजस्थान के देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है। तो राजा ऐसे मंदिरों को आकर देखते थे, पुरातन मंदिर को। तो वहाँ पर वो जो मंदिर है ना हमारा इस्कॉन में भी है, वो इस्कॉन हमारे भक्त लोग उसको संभालते हैं, बन बिहारी मंदिर। उस समय पर उस मंदिर में बन बिहारी का विग्रह था। बन बिहारी मतलब वो कृष्ण जो राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं, उसमें ऐसा सुंदर विग्रह था जिसमें राधा रानी बैठी हुई है कृष्ण को पीठ करते हुए, कृष्ण उसके बालों का श्रृंगार कर रहे हैं। तो कोई पुजारी नहीं था, तो उन्होंने एक घर में जाके देखा कि बालक है, माता पिता है। तो राजा ने प्रत्यक्ष पूछ लिया कि आप अपने बालक को दे सकते हो क्या? मैं वहाँ पर उसको अपने सरकारी नौकरी में लगाऊंगा और उसको केवल भगवान की सेवा करनी है। तो उन्होंने हाँ कर दी। उस बालक का नाम था बाबूलाल शर्मा। तो बालक अवस्था में वो कुसुम सरोवर किनारे वो उस मंदिर में लेके आए राजा उसको। राजा ने उसको आश्रय दिया और सेवा दी। और बाबूलाल शर्मा ने अपने जीवन के 75 साल क्या सेवा की? कुसुम सरोवर के आसपास में फूल बिनना, उसकी माला बनाना और बन बिहारी को पहनाना। 75 ईयर्स बाबूलाल शर्मा ने वो सेवा की। बीच में उनका शांति देवी के साथ विवाह हुआ और भगवान की इच्छा से कोई संतान नहीं हुई, और फिर एक दिन उनका देहांत हो गया, शांति देवी अकेली हो गई। दोनों ने मिलकर वहाँ पर बहुत खूब सेवा की। शांति देवी को विधवा होने के बाद एक स्वप्न आया। क्या स्वप्न था वो, क्या बताएं आपको? एक स्वप्न ऐसा आया कि स्वप्न में दिव्य विमान आया, वो कुसुम सरोवर के सामने उतरा, उसमें से एक दिव्य गोपी बाहर आई और उसने कहा कि मैया, राधा रानी ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है, मैं आपके साथ ही रहूँगी। और वो दिव्य गोपी उनके साथ रहने लगी। तो स्वप्न देखकर शांति देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये सब अभी की घटना है। शांति देवी अभी भी है उस जगह पर, बहुत वृद्ध अवस्था में उस जगह पर है जहाँ पर हम अभी बाहर से दर्शन किया। तो अगले दिन एक बड़ी गाड़ी आई और आके रुकी कुसुम सरोवर के बन बिहारी मंदिर के सामने। उसमें एक इस्कॉन डिवोटी माता जी उतरी, यंग, बहुत यंग, और बोली कि मेरे गुरु जी ने मुझे आपकी सेवा में भेजा है, मैं आपके संग रहना चाहती हूँ। वहाँ रह गई वो माता जी। कौन है? पालिंद्री माता जी, जो साउथ अफ्रीका से हैं, साउथ अफ्रीकन और भारतीय वंश के साउथ अफ्रीकन, गुजराती बोलने वाले। उनके माता पिता वहाँ पर कई पुश्तों से बसे हुए हैं, तो ये भक्त बनी इस्कॉन में। उनके गुरु थे, वो भी नहीं रहे, और उनके निर्देश से उन्होंने वहाँ भेजा उनको। और स्कॉटलैंड के बहुत सारे डिवोटीज उनके साथ में, ये साउथ अफ्रीका से बहुत सारे डिवोटीज आते थे, उन्होंने सब ने मिलकर वो मंदिर का सेवा करना आरंभ किया। फिर बीच में बहुत ऐसी घटनाएं हुई, सब भक्त भाग गए और एक ब्रह्मचारी और ये माताजी रुकी, और माताजी शांति देवी राज भी वो दोनों वहाँ पर हैं। और कितने साल हो गए प्रभु जी, अभी 15 साल या 20 साल हो गए, शायद 20 साल से वो सेवा कर रहे हैं। माताजी बहुत वृद्ध हो गई है और बिस्तर में ही। अभी पलिंद्री देवी अभी भी उनकी फुल टाइम सेवा में है, और फिर हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में उसका जिम्मेदारी लिया है, और बहुत सारे भक्त इकट्ठा होकर अभी उस मंदिर में सेवा कर रहे हैं। बहुत सुंदर सेवा, इतनी सुंदर ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अभी वो जो विग्रह हैं जो बीच में थे उधर, वो चोरी चले गए, विग्रह भी नहीं है वहाँ पर। ऐसे कई विग्रह वृंदावन धाम में चोरी हो गए हैं, तो उसके जगह पर उन्होंने 2 शालिग्राम शिलाएँ रखी हैं, एक डार्क शालिग्राम शिला और उसके नीचे एक लाइट कलर की शालिग्राम शिला, ब्राउन कलर की है। और वो जो डार्क कलर की शिला है वो ऊपर है, और उसके से हाथ बनाए गए हैं, उसके हाथ में कंघी है, और एक हाथ में वो छोटी शिला जो है उसके बाल उसके हाथ में है, यानी ऊपर की शिला कृष्ण है, नीचे की शिला राधा रानी है, और वो उनके बालों का श्रृंगार कर रहे हैं। और राधा रानी की शिला जो है उसके सामने एक आईना रखा है जो राधा रानी कृष्ण को देख रही है। सा सुंदर दृश्य है वहाँ पर, कैसा है ना, भगवान की सेवा जो है वो भव्य होने की जरूरत नहीं है, भाव होने की आवश्यकता है। भव्य यानी बहुत सुंदर दागिने, बहुत सुंदर अलंकार, बहुत भव्यता, ऐश्वर्य, लेकिन भगवान भाव से रिझते हैं। तो यहाँ पर भाव की सेवा है, ब्रज में कोई ऐश्वर्य की सेवा नहीं है, भाव की सेवा है। तो ये कुसुम सरोवर की अभी की लीला है जो चल रही है अपनी आँखों के सामने। तो भगवान क्या क्या चमत्कार करते, देखो, एक स्वप्न दिया, उसका एक डिवाइन लुक दिया, और उसी को रथ को एक कार बना के उधर भेज दिया। तो स्वप्नों में देखा वो सत्य था, वो नेक्स्ट दिन में सत्य हो गया। यानी भाई कुसुम सरोवर धाम की, समय आगे बढ़ रहा है, अभी हम चलते हैं श्याम कुटी जहाँ हम गए थे। वहाँ पर वो बाबा ने हमको चेतावनी दे दी, तो हमारा भाव वहाँ खंडित हो गया। हमने कहा उस भाव को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो श्याम कुटी की बहुत सुंदर लीला है, श्याम कुटी नाम क्यों पड़ा उसका, ये सुंदर लीला है। हमारे कृष्ण भगवान जो है वो वहाँ पर एक बार आए, राधा रानी के साथ में अकेले थे। उन्होंने क्या किया, राधा रानी को कहा कि हम आपको कृष्ण बना देते हैं, और पूरा काजल पोत दिया और अपने जैसा श्रृंगार किया। अभी क्या हो गया, 2 कृष्ण उत्पन्न हो गए। हाँ, तो राधा रानी जो कृष्ण बनकर बिठाया है उनको बोला आप कुछ बोलना नहीं है, आपको शांत रहना है, बस पद्मासन में बैठना है शांति से। अच्छा आप बैठे ना, वैसे बैठना है। और वो खड़े हैं, और उन्होंने राधा रानी के स्वर में सब गोपियों को बुलाया। राधा रानी वहाँ बैठी है शांत, कृष्ण खड़े हैं, और राधा रानी का स्वर से उन्होंने कृष्ण सब गोपियों को बुलाया। तो सब गोपियाँ भाग भाग के आई, तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, 2 कृष्ण, एक बैठा है एक खड़ा है। फिर जो खड़ा कृष्ण है वो राधा रानी की आवाज़ में बोलता है कि कृष्ण ने हम पर जादू टोना कर दिया है, हमको ऐसा मंत्र चलाया है जो वो कहता था कि पूर्णमासी से प्राप्त हुआ था, और हमने उस पर विश्वास नहीं किया। वो बोल रहे हैं, वो कैसे बोल रहा है कि मैं राधा रानी हूँ, लेकिन कृष्ण ने जब कहा कि मुझे पूर्णमासी से मंत्र प्राप्त हुआ है तो मैंने विश्वास नहीं किया, तो मैंने कहा दिखाओ, तो उन्होंने प्रयोग किया और मुझे कृष्ण बना दिया, केवल मेरा कंठ छोड़ दिया जो मेरा है। तो सब गोपियों को उत्सुकता हुई, उन्होंने कहा क्या मंत्र था वो, तो उन्होंने कहा चलो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा करके एक एक सखी को अंदर ले गए और उनके साथ लीला किया। फिर बोला कुछ को बोलना नहीं। फिर वो बाहर जाते हैं, दूसरी सखी पूछती है कि क्या क्या हुआ, नहीं आप आओ आपको दिखाता हूँ। ऐसा करके सभी सखियों के साथ में एकांत में उन्होंने बहुत देर तक लीला की, इसलिए उस कुटी का नाम है श्याम कुटी, श्याम वन, ये लीला है। ये हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं कृष्ण भावना अमृत में। एक दिन राधा रानी, एक दिन नहीं हर दिन वहाँ पर राधा रानी को सब सखियाँ श्रृंगार करके सिंहासन में बिठाती हैं, रत्न सिंहासन। तो वो जो था ना, वो बिल्डिंग जैसा था उधर, सीमेंट कंक्रीट ईंटों का बना हुआ, वो रत्न सिंहासन का स्थान है, और वहाँ पर राधा रानी को रोज़ बिठाकर वो श्रृंगार करके उनका पूजन करती थी। तो एक दिन पूर्णिमा के रात में राधा रानी को ढूंढते ढूंढते वहां पर मुखाराई देवी, कौन है वो मुखाराई देवी? राधा रानी की माता है वो। मुखारा गांव वहां से बहुत 1 किलोमीटर पास में है, मुखारा गांव, मुखाराई गांव, और वहां पर मुखारा इंद्रसेन गोप राधा रानी के नाना और नानी मुखारा देवी पास में रहते हैं। उनको पता चला कि राधा रानी वहां पर आई हुई है, तो अपने पोती का नानी क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, देवती है ना, तो अपनी देवती का दर्शन करने के लिए, देवती इज अ ग्रैंड डॉटर, डॉटर ऑफ डॉटर, हाँ तो देवती कहते हैं, हाँ हाँ दोहिती, वो राजस्थान में थोड़ा अलग बोलते हैं, यहाँ पर देवती बोलते हैं। और देवता यानी लड़की का पुत्र, लड़की की पुत्री को देवती और लड़के के पुत्र को देवता, ध देवता, और लड़का के पुत्र को क्या कहते हैं, नातनी, नाती और नातनी, नाती यानी लड़का और नातनी यानी लड़के की बेटियां। थोड़ा सा इनसे सीखा हूं ब्रजवासियों का क्या क्या कहना है। तो मुखारा देवी अपने देवती को मिलने के लिए उत्सुकता से वहां आई, और दूर से क्या देखती है कि हमारी देवती तो सिंह रत्न सिंहासन पर बैठी है, सब सखियां उनका श्रृंगार और पूजन चल रहा है, तो वो छुप गई झाड़ी में वहां पर, तो बहुत देर तक दर्शन करती रही अपने देवती का उस सुंदर स्वरूप में। तो पूरा जो रत्न सिंहासन का लीला है वो मुखारा देवी ने दर्शन किया है। किसी और चंद्रमा की रात में कृष्ण भगवान और बलराम जी सारी गोपियों को लेकर वहां विहार कर रहे थे, और मैंने एक वर्णन सुना है जो इस वर्णन में नहीं आता है, लेकिन उस समय राधा रानी सिंहासन पर बैठी थी तो शंखचूड़ राक्षस वहां पर आया और वो सिंहासन चोरी करके लेके गया। एक लीला है। दूसरी लीला ये है कि कृष्ण बलराम सभी सखियों के साथ में वहां विहार कर रहे थे, बहुत बहुत सुंदर 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 गोपियां सुंदर श्रृंगार करके चांदनी रात में कृष्ण के साथ लीला कर रही थी, तो वहां पर ये शंखचूड़ आता है। ये यक्ष था और कुबेर का सेवक था, कुबेर का दरबार में उसका सेवा थी, बहुत धनी था, क्योंकि धन कुबेर भी बहुत धनी है, भगवान का देवताओं का कोषाध्यक्ष है वो, तो वैसे ही अपने राजा के धन पर उनको भी गर्व था क्योंकि वो भी धनी थे बहुत। तो धनी लोगों को क्या लगता है पता है आपको, धनी लोगों को लगता है कि विश्व की हर एक भोग्य वस्तु हमारे लिए बनाई गई है, तो उसको लगा कि जो भी सुंदर स्त्री है विश्व में वो हमारे भोग के लिए है, वही तो बहुत सारी सुंदर स्त्रियां हैं वो सब मुझे मिलनी चाहिए, ये दोनों पुत्र कौन है सुंदर से दिखने वाले लेकिन ग्वाल बाल कौन है ये, तो उनके बीच में उद्दंडता से जाकर उसने क्या किया, वो एक गोपी है शतचंद्रानना, उसको ऐसा इशारा करके डरा के भगा दिया उसने, और बाद में सारी गोपियों को ले गया वो, तो सब चिल्लाने लगे कृष्ण कृष्ण बलराम जी बचाइए बचाइए। तो भगवान ने देखा कि गोपियां बहुत भयभीत हो रही है, पहले लगा कोई जानवर जैसे कोई है, कोई अभी बंदर भी कभी आपको डराता है ना थोड़ी, हम लोग उसको सब लोग मारने चल जाते हैं ठीक है डराता है इधर उधर, लेकिन बाद में गंभीर विषय हुआ, सब लोग किया चिल्लाने लगे, सब गोपियों को ले जाने लगा वो, तो भगवान ने कहा बलराम जी आप गोपियों को यहाँ संभालो और मैं उसकी गोपियों को वहाँ बचाता हूँ, आप तू जहाँ रुको कुछ गोपियों को लेकर। तो आगे जाकर भगवान ने भयंकर युद्ध किया और शंखचूड़ का वध किया, और शंखचूड़ का वध करने के बाद में उसके शरीर में सर में शंख था वो भगवान ने उखाड़ा और वो बलराम जी को भेंट में दिया, कहते हैं आगे जाकर वही समंतक मणि बना। एनीवेज तो वो शंखचूड़ जब उनका वध हुआ तो शंखचूड़ की आत्मा जो है वो ज्योति निकल के सीधे कहाँ गई, सखाओं में श्रीदामा थे उसके अंदर प्रवेश किया उसने। तो फिर ये कहानी सुन रहे हैं एक बहुलाश्व नारद मुनि के मुख से गर्ग संहिता में, मुझे ऐसे कैसे हुआ, तो उन्होंने दो कहानी उनको बताई, पहले बता पूछा ये शंखचूड़ कौन था, और फिर पूछा ये शंखचूड़ की ज्योति भगवान के अलावा उधर कैसे गई, क्योंकि हर कथा में बताते थे कि भगवान के अंदर प्रवेश किया, ये श्रीदामा के अंदर गई, तो पहले बताया कि ये शंखचूड़ जो था वो कुबेर का या यक्ष कुबेर का सेवक था, बहुत बलवान था प्रचंड बलवान, उसने सुना कि कोई कंस नाम का राक्षस राजा है चक्रवर्ती सम्राट है वो जगत जेता है दिग्विजयी है, तो उसको इसके बाद युद्ध करना चाहिए, तो जाके उसको ललकारा, तो कंस भी बड़ा पहलवान था उसने भी युद्ध शुरू किया, 27 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ उनका, 27 दिन तक ना कंस हार रहा है ना शंखचूड़ हार रहा है, ना कंस जीत रहा है ना शंखचूड़ जीत रहा है, सबके रोंगटे खड़े हो गए, देवता भी खड़े हैं, क्या होगा। 27 दिन के बाद में कुछ नतीजा नहीं निकला तो गर्ग मुनि प्रकट हो गए। उन्होंने कहा युद्ध रोको, सबने तुरंत दोनों ने दंडवत किया उनको। उन्होंने कहा युद्ध रोको आप, बोले आप में से कोई भी एक दूसरे को परास्त नहीं कर सकता, आप अपनी शक्ति को व्यर्थ गंवा रहे हो, लेकिन आपका कॉमन शत्रु कृष्ण है, आप क्यों अपने आप में लड़ते हो, आप मित्रता करो और कृष्ण के साथ लड़ो। क्योंकि उनको पता था कि कृष्ण के हाथों से उनका वध होने वाला है। तो उन्होंने युद्ध रोक के हाथ मिलाया, दोस्त बने। तो ये एक कहानी है, और शंखचूड़ मित्र बनकर चले गए। और बाद में कहानी बताई कि ये शंखचूड़ आए कैसे पृथ्वी पर। गौलोक धाम में कृष्ण एक बार विरजा गोपी के साथ में लीला कर रहे थे एक वन में, और श्रीदामा को कृष्ण के प्रिय सखा, प्रियतम सखा को उसके गेट पर रखा था कि मैं विरजा गोपी से मिल रहा हूँ, आप किसी को अंदर आने मत देना। तो वो अंदर लीला कर रहे हैं विरजा गोपी के साथ, श्रीदामा गेट पर खड़े हैं प्रवेश द्वार में, और राधा रानी को पता चलता है कि कृष्ण अकेले में विरजा गोपी को मिल रहे हैं। तो अपने पूरे झुंडों को लेकर वहाँ पर आती है, मतलब कृष्ण कहाँ है, तो वो कहते हैं यहाँ पर कृष्ण नहीं है। नहीं नहीं, हमको पता है, हमें पता चल रहा है कि कृष्ण यहाँ पर है विरजा गोपी के साथ। तो वो हल्ला मचता है बाहर बहुत, तो आवाज़ सुनकर विरजा गोपी जो है ना, वो नदी के रूप में रूपांतरित हो जाती है, मतलब अपने आप को गायब कर देती है, नदी बन जाती है विरजा नदी, और श्री कृष्ण भी चले जाते हैं। तो फिर वो चले जाते हैं सब राधा रानी वगैरह। दोबारा उनको वो संकेत होता है मन में कि कुछ हो रहा है, राधा रानी दोबारा आती है, दोबारा वो रोकती है उसको, श्रीदामा रोकता है। तो उस समय थोड़ा सा गरम गरम बातें होती है, बहुत हॉट डिस्कशंस। तो कहती है कि हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, हम यहाँ पहरेदार हैं। तो कृष्ण कहते तुम कौन होते हो, राधा रानी कहते तुम कौन होते हो, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पर रखा है, आप अंदर नहीं प्रवेश कर सकती है। ऐसे बहुत, अभी क्या है आश्चर्य की बात यह है कि वो दोनों भाई बहन हैं, ऐसा नहीं कि अनजान लोग हैं, लेकिन रोल उनका अभी डिफरेंट है। तो फिर वो उसको शाप देती है कि तू राक्षस बन जा पृथ्वी पर जाकर। इतने कृष्ण को मिलने की व्याकुलता है और वो मना कर रहा है, रोक रहा है, तो शाप देती है। तो वो भी कुछ कम नहीं है, वो कहते हैं तुम भी पृथ्वी पर जाओगी और तुम्हारे प्रियतम से 100 साल विरह में रहोगी पृथ्वी पर। इसलिए वो 100 साल का विरह हुआ, और वो श्रीदामा जो है ऊपर के, वो श्रीदामा बनकर भी आए और शंखचूड़ बनकर भी आए, और वो शंखचूड़ का वध हुआ तो उनकी ज्योति जो है वो श्रीदामा के शरीर में प्रवेश कर गई। तो ये सब लीलाएं जो थी वो श्याम कुटी से संबंधित थी। हरि बोल। ओके, अभी रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में मैंने कथा सुनाई है, हाँ हो गया सुना के, तो ठीक है। और कोई किसी को प्रश्न है? मानसी गंगा अभिराम प्रभु, चलो मानसी गंगा का, वहाँ पर जगह बहुत छोटी सी है, वहाँ पर कल रुकना और कथा करना नामुमकिन है, तो उसकी कथा आपको बता देते हैं। तो कृष्ण भगवान ने यमुना जी को इतना संग दिया, इतना प्रेम दिया, इतना अंग सानिध्य दिया कि जन्म होते ही कूद पड़े यमुना जी में, और जन्म होते ही यमुना जी को चरणामृत बना दिया। उसके बाद में इतनी बार छलांग लगाई, इतनी बार नौका विहार किया, इतने बार जल क्रीड़ा की गोपों के साथ, गोपियों के साथ, गौचारण के साथ, क्या बताएं। यमुना जी के बिना कृष्ण की लीला संपन्न ही नहीं होती है। यमुना किनारे राधा रानी ने कृष्ण को मुरली सिखाई, नृत्य सिखाया, यमुना जी के किनारे क्या नहीं किया भगवान ने। गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया तो उनका चिरहरण लीला भी वहाँ किया। यमुना किनारे रासलीला रचाया, यमुना किनारे कामदेव को पिघला दिया। अनंत लीलाएं यमुना के बिना, वो पार्श्वभूमि बैकग्राउंड के बिना भगवान की लीलाएं संपन्न नहीं होती है। तो गंगा जी को तो ईर्ष्या नहीं हुई, लेकिन ऐसा लगा कि मेरे बहन को इतना सारा संग मिल रहा है, मुझे भी कुछ ब्रज में कुछ स्थान मिले, सेवा मिले, तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगी, धन्य हो जाऊंगी। तो यमुना जी ने कृष्ण को एकांत में विनती की कि गंगा जी की ये कामना पूरी करो। तो दो प्रकार की लीलाएं उसमें वर्णन आता है शास्त्र में, अलग अलग प्रकार पे। एक ये है कि भगवान ने वत्सासुर का वध किया। वत्सासुर जो है वो बछड़े के रूप में आया था। उसकी कहानी ऐसी है कि वो राक्षस था, उसका नाम त्रुमिल ने प्रमिल प्रमिल प्रमिलासुर राक्षस था, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गया, उसका बड़ा गर्व था अपने बल पर। तो उसने देखा कि इनके पास तो कामधेनु है, वो जो चाहे उनको देती है, वो इतनी प्रभावी इतनी शक्तिशाली गाय है कि जो आपको चाहिए हर चीज एक गाय देती है। एक बार तो उसने विश्वामित्र के करोड़ों सैनिकों को बहुत व्यंजनों का मिलकर भोग खिलाया था, करोड़ों सैनिकों को, घोड़ों को भी और राजा को भी। एक जंगल के फटी टूटी फूटी कुटिया से गाय ने उनको इतना भोजन कराया था। मैं बता रहा हूँ वही गाय की बात है, क्योंकि वशिष्ठ मुनि ना सृष्टि के निर्माण से, जब सृष्टि का निर्माण हुआ, अयोध्या नगरी सबसे पहली नगरी निर्माण हुई, तब से वशिष्ठ मुनि वहाँ पर है। उसके कई पीढ़ियों के बाद प्रभु रामचंद्र आए हैं। वो सारे जितने राजा हुए, मनु, श्राद्धदेव मनु, वैवस्वत मनु, इन सबके राज्य काल में वशिष्ठ मुनि ही गुरु थे उनके। इसलिए आपको लगेगा अरे सत्ययुग की कथा में भी वो आ रहे हैं, द्वापर में भी कथा में आ रहे हैं, अयोध्या की कथा में भी आ रहे हैं, त्रेता में भी आ रहे हैं, सब जगह वशिष्ठ मुनि का प्रादुर्भाव है, क्योंकि वो उधर ही थे, वो चिरंतन जैसे लगते हैं, चिरंजीवी महात्मा जैसे। तेनी भेज तो वे प्रमिलासुर गया और उनको बोला कि ये गाय मुझे दे दो। तो उस समय वशिष्ठ मुनि ध्यान में थे, मौन में थे, वो कुछ बोलने समझ गए थे लेकिन वो ध्यान में थे, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। तो गाय स्वयं बोली, दुष्ट, तू ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ पर मुनि को चीट करने के लिए आया है, मैं तुम्हें शाप देती हूँ, जा तू बछड़ा बन जा। तो उधर के उधर ही ब्रह्मासुर बछड़ा बन गया, तो एकदम नम्र हो गया, बिल्कुल हाथ पांव पड़ने लगा। तो वशिष्ठ कामधेनु ने कहा, वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर में जब कृष्ण आएंगे तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो जाके वो भयंकर वत्स बना, भयंकर, और फिर वो घुस गया झुंड में कृष्ण के। कृष्ण ने बलराम को बताया, देखो वो दिख रहा है ना, वो सुबह हमारे साथ में नहीं आया था। ये बहुत बड़ी विशेष बात है, ये बात छोटी सी नहीं है। कृष्ण को अपने साथ में और अपने ग्वाल बालों के साथ में आने वाले हर बछड़े का नाम और पहचान दी, इसलिए वो बलराम जी को कह सके कि ये सुबह नहीं आया था हमारे साथ। उनको ये भी पता था आज कितने बीमार है, कितने एब्सेंट है, कितने घर पे बैठे हुए हैं, कितने साथ में हैं, सब पता था। तो ये देखो उसकी आंखें देखो कितनी लाल लाल है, देखो ऐसे घूर के देख रहा है, बाकी सब बाल बाल कितने प्रेम से देख रहे हैं, घूर घूर को देख रहा है। समझ में आया बलराम जी, ये राक्षस है। श्री कृष्ण उसके पीछे से गए, उसका पूंछ पकड़ा और घुमा घुमा के पटक दिया। बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन संक्षेप में बता रहा हूँ। तो ये वत्सासुर का वध करके आए तो सब गोपियाँ राधा कुंड के जैसे बोली उनको, आपने तो बछड़े का हत्या किया है, गऊ वंश की हत्या की है। बोले क्या करना पड़ेगा आपको, गंगा जी में स्नान करना पड़ेगा। तो सब ग्वाल बालों को लेकर, सभी गोपियों को लेकर वो गोवर्धन के मध्य में आए और उनके मन से गंगा जी को प्रकट किया, आदेश दिया कि अपना जल यहाँ पर प्रकट करो। एक कहानी है, गंगा जी वहाँ प्रकट हुई मानसी गंगा के रूप में। दूसरी कहानी ये है, इसको कल्पभेद कहते हैं। भगवान एक बार नहीं आते, वो बार बार आते हैं, जब भी उनका समय आता है। पता है आपको कभी आते हैं भगवान? हर द्वापर में नहीं आते हैं। 999 दिव्य युग, सत्य त्रेता द्वापर कली, एक को एक कल्प कहते हैं। ऐसे 999 कल्प समाप्त होने के बाद जब हजारवा कल्प शुरू होता है, तो हजारवें कल्प के द्वापर में श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, अपनी नैमित्तिक लीला करते हैं, और उसके बाद वाले कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं और लीला करते हैं। तो ये बात कहाँ से निकली थी? हाँ, तो दूसरी यही कल्प भेद का कारण है, इसलिए अलग लीला है। तो नारद नंद बाबा एक बार गोवर्धन में बैठकर गंगा जी की महिमा इस विषय पर संत से सत्संग सुन रहे थे, सब ग्वाल बालों के साथ नित्य नियम से सत्संग करते थे। एक बार गंगा जी के विषय में लीला शुरू हुई, तो उस लीला में क्या सुन रहे थे कहानी, कि करुड़ जी एक बार अपने भक्ष्य सर्प को पकड़ते हैं और अच्छी जगह बैठ कर खाने के लिए उड़ रहे हैं, तो गंगा जी के ऊपर से उड़ रहे हैं, और सर्प कैसा लंबा होता है ना, ऐसा पकड़ा है तो बहुत सारा हिस्सा उसका जमीन पर लटकते रहता है हवा में। तो वो गंगा जी के ऊपर से जब उड़ रहे थे, तो सर्प की जो पूंछ है उसका स्पर्श गंगा जी के पानी को हुआ। तो उड़ रहे हैं, उनको पता नहीं है, लेकिन जैसे ही वो स्पर्श हुआ, वो सांप का रूपांतर चतुर्भुज वैकुंठवासी विष्णु दूत के रूप में हुआ। ऐसा पकड़ा है ना, वो ऐसा हो गया, समझ आया ना वो। हमने ऐसा पकड़ा है उसको सर्प के रूप में, तो अचानक वो ऐसा हो गया, बोले क्या हो गया मेरे भक्ष को, तो वो चतुर्भुज हो गया, शंख चक्र पद्म गदाधारी पीताम्बरधारी मुकुटधारी। तो उनको समझ में आया गंगा जी का कृपा हुई इसके ऊपर, तो उसको पकड़ा था, उसको कंधे पे बिठाया और बैठ कर वैकुंठ छोड़ के आए उसको। उस दिन का लंच कैंसिल हो गया उनका। ये कथा कौन सुन रहे हैं? नंद बाबा सभी सभा में बैठ कर सुन रहे हैं, वो सभा में कोई सो न रहा है, सब लोग जागरूकता सुन रहे हैं, अभी क्या होगा, फिर क्या होगा, अब क्या होगा। तो देखा तो चतुर्भुज विष्णु बन गए वो। तो नंद बाबा ऐसे झट से खड़े हो गए उस कथा में, बोले अब भी जाना है गंगा में स्नान करने के लिए। सब देखते रह गए, नंद बाबा इतने प्रेरित कैसे हो गए? बोले नहीं नहीं अभी आपको जाना है। तो संत की आज्ञा ली और सब चलने लगे। तो कृष्ण भगवान बोले अरे बाबा कहाँ जा रहे हो आप? बोले अभी अभी कहानी सुनी हमने, हम जा रहे हैं गंगा जी स्नान करने के लिए, इतना कल्याण होता है उसका। तो भगवान ने कहा रुको जरा मेरे साथ चलो। तो भगवान की जो भाषण कला है ना, संभाषण, वो मोहिनी विद्या है, सम्मोहिनी। जब बोलते हैं ना कुछ तो ऐसा सामने वाला व्यक्ति ना कुछ कह नहीं सकता है उनके सामने। अरे इतना बड़ा इंद्र का पूजा कैंसिल कर दिया और पत्थर की पूजा करने को बताया, बोलो फिर भी मान गए। ये सम्मोहिनी है, सम्मोहिनी भाषण है उनका। तो उनको बोले चलो गोवर्धन के बीच चलो। सब लोग गए, आध्याधारक सभी बड़े बड़े बुजुर्ग दाढ़ी मूछ वाले पहुंच गए गंगा जी के अपना गोवर्धन के बीच में। और अभी देखो नंबर वन चमत्कार, भगवान खड़े हो गए, आंख बंद किया तो उनके हृदय वक्षस्थल से गंगा जी प्रकट हुई, नंबर वन चमत्कार। दूसरा चमत्कार, वो इतने छोटे से कान्हा को दंडवत प्रणाम और श्लोक उच्चारण और वंदन स्तुति गायन कर रही है। दूसरा क्योंकि गंगा जी को सब पहचानते हैं, इतने ज्ञान सबको है, वो मगरमच्छ पे बैठी हुई है, उसके हाथ में पोतियां हैं, उसके हाथ में जल है, वो छोड़ रही है, तो दिव्य दर्शन गंगा जी का हो रहा है। और वो गंगा जी जो हमारे लिए वंदनीय पूजनीय है, वो हमारी लाला को दंडवत कर रही है। और तीसरा चमत्कार, बड़े ठाट से ठाकुर जी हमारे लाला जो है वो उनको ऑर्डर दे रहे हैं कि गंगा जी आपका जल यहाँ प्रस्तुत करो, हमारे पिताजी को स्नान करना है। और चौथा आश्चर्य क्या है, गंगा जी वो कर रही है, ऐसे नहीं कि एक बाल बाल क्या बोल रहा है, मैं क्यों सुनूं उसका। दंडवत भी कर रही है, वंदन भी कर रही है और बहुत आदर में खड़ी है और वो जल भी प्रकट करती है। तो गंगा जी ने सबके आंखों के सामने अपना जल गोवर्धन के मध्य स्थल पर प्रकट किया और एक सागर समान विशाल कुंड वहां निर्माण किया, जिसका नाम मानसिक गंगा है। फिर नंद बाबा ने कुछ आर्गुमेंट नहीं किया, फटाफट कपड़े उतारे और स्नान किया, सब ग्वाल वालों ने स्नान किया। इस प्रकार से भगवान ने गंगा जी को ब्रज में गोवर्धन के मध्य में चिरंतन स्थान दिया। अभी कुछ स्थान प्रकट किया तो ऐसे खाली नहीं बैठता है। तो भगवान ने अपने पूरे लीला में मानसिक गंगा में नौका विहार किया। नौका विहार की अद्भुत लीला जो है उनका फेवरेट स्थान है मानसिक गंगा। एक लीला बताता हूँ, नौका विहार। नौका विहार बहुत जगह पर होता है, हम पीली पोखर गए थे वो भी नौका विहार की स्थली है, प्रेम सरोवर भी नौका विहार की स्थली है, जमुना जी भी नौका विहार की स्थली है। जहाँ जहाँ जलाशय है भगवान वहाँ पर जल विहार करते हैं। तो एक बार गोपियाँ ना वैसे देर हो गई थी उनको, वो सब मटके वटके लेकर जा रही हैं, उनको गोवर्धन कैसा है ना, वो बरसाना है मथुरा इस तरफ है, बरसाना उस तरफ है उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर मथुरा है। और वो बरसाने से जब जाती हैं तो बीच में गोवर्धन आता है, तो गोवर्धन में घाटियाँ होती है, घाटियाँ यानी ऐसा ऑफिशियल रोड होता है जिसपे आप गोवर्धन पे चढ़ के जा सकते हो। हम लोग गोवर्धन पे चढ़ते नहीं, लेकिन घाटियाँ उसके लिए बनाई गई है, एक कुसुम सरोवर के पास में भी है, बहुत सारी घाटियाँ हैं, आपको अगर चलते हुए दिखाऊंगा मैं कभी, घाटियाँ दिखती हैं, उसके पार जाने का रास्ता है। तो बीच में दान घाटी है, दान घाटी जो है वो बिल्कुल मध्य में है, उसके बाजू में ही वो मानसिक गंगा है। तो वो उसके किनारे आ गए मानसिक गंगा के, और उनको बोट लेनी थी ताकि पार करके पल्ली पार जाएं और चल के मथुरा चले जाएं दही दूध बेचने के लिए। तो उस दिन देर होने की वजह से सारी नावें जो है वो चली गई थी, कोई नाव ही नहीं है, बहुत ढूंढ ढूंढ के थक गए। तो उनको एक टूटी फूटी नाव मिली और एक बुढ़ा सा नाभिक मिला, ऐसा सोया ऐसा आराम से, तो सब जाके जगाया, उठो उठो हमको कराओगे पल्ली पार कराओगे? बोला हाँ करेंगे, क्या दोगे? तो उन्होंने बहुत घिसा घिस किया और एक तय किया फिर एक मटका माखन आपको देंगे। बढ़िया है ना, रेंट इज गुड, वेरी नाइस टेस्टी रेंट। तो तय हुआ, सब लोग बैठ जाओ। तो बूढ़ा सा नाभिक बैठ गया, सब गोपियों को बिठाया और नाव चलाने लगा। कुछ समय तो रोक दिया नाव को, बोला क्या हुआ? कुछ जल्दी है बाबा, रुक क्यों गए? बोले दिन भर कुछ खाया नहीं है, भूख लग रही है, हमारा जो किराया है वो दे दो, वो शक्ति आएगी तो चलाऊंगा। बोले नहीं नहीं, किराया तो पहुँचाने के बाद में देते हैं, फिर पहले देते हैं। देखो पहुँचेंगे नहीं तो किराया कब देंगे, इधर ही बैठेंगे। पहुँचने के लिए शक्ति चाहिए, शक्ति के लिए किराया चाहिए, किराया खाएंगे तो चलेंगे। तो फिर वो क्या होगा, वो विवश हो गए, दे दिया। तो उन्होंने ना थोड़ा सा खाने के बदले में पूरा मटका ही खा लिया। आपने कभी मक्खन खाया है क्या फ्रेश? अभी परसों हम लोग यात्रा गए थे ना खायरा में, वैसा फ्रेश चंड मक्खन मिश्री के साथ लाके दिया। क्या कहें आपको, उसका स्वाद वर्णन नहीं कर सकते। वो तो कृष्ण के समय के गायों का, तो ये पूरा खाने के बाद में पेट भर गया बेचारे का। और पता है ना पेट भरने के बाद क्या होता है, पेट भरा उसका, लेकिन उसने चलाना शुरू किया फिर रोक दिया। बोले बहुत नींद आ रही है, अभी पेट भर गया नींद आ रही है, बूढ़ा हूँ मैं, थोड़ा सोना चाहता हूँ। बोले नहीं नहीं, हमको जल्दी है, बहुत सोने का कोई काम नहीं है। देखो मेरे पास शक्ति नहीं है, सारा मेरा जो रुधिर रक्त जो है वो पेट की ओर प्रवाहित हो गया है, मेरे बाजुओं में कोई रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा है, सब मक्खन के पाचन करने के लिए पेट की ओर चला गया है, मैं चलाऊँ कैसे, थोड़ी देर विश्राम करने दो मुझे। बोले ठीक है सो जा। तो सोने सोया, मतलब अब सखियाँ बैठी अपना मटका लेके, सब अभियान पार जाना है और बेचारा सो रहा है बीच में आराम से। तो बीच में उठता है, बोलता है मुझे ना जब सोता हूँ तो हाथ पाँव को मालिश करने की आदत है, आप दो चार लड़कियाँ जरा कर दो मालिश, थोड़ा जल्दी नींद समाप्त हो जाएगी। तो क्या करेंगे, वो बहुत चिढ़ती है लेकिन वो करती है मालिश उसको, फिर उठ जाता है, फिर वापस चालू करता है। थोड़ी देर के बाद बोलता है, फिर रोक देता है। बोला अभी क्या हो गया? बोले नाव बहुत पुरानी है और वो डूब रही है, देखो 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 देखो, उस छेद से पानी आ रहा है, देख रहे देख रहे देख रहे, तो वास्तव में पानी आ रहा है। बोले अभी ये पानी जो है ना वो रुकेगा नहीं जब तक तुम वजन यहाँ पर कम नहीं करोगे। बोले क्या वजन कम करना है? बोले जो मटके इतने बड़े बड़े लाया वो उसको फेंकना पड़ेगा, अभी क्या करें, उसी को बेचने के लिए पार जाने के लिए ही नाव की थी। लेकिन अभी बोलते मटके के लोभ में, धन के लोभ में रहोगे तो जीवन ही नहीं बचेगा, जीवन बचेगा तो फिर वापस दही बना के वापस बेच सकती हो। तो बड़े ही कष्ट से हाँ हृदय पर पत्थर रखते हुए सारे इतने कीमती मूल्यवान मटके सब फेंक दिए, दूध के दही के माखन के इतने स्वादिष्ट पद्मगंधा सब फेंक दिए। बोला हाँ भी ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आ गया, फिर नाव चालू की और फिर रोक दिया बीच में। बोला अभी क्या हो गया? बोला अभी भी भारी है। बोला अभी क्या करें, इतने बड़े बड़े अलंकार पहन के आई हो तुम, इतना गले में इधर सब जगह पर, उतना कितना वजन है उसका, उसको उतार के फेंकना होगा। क्या आप देखो कितना सुंदर सुंदर अलंकार जो है सब उतारे, कान से नाक से हाथ से उंगली से पैर से कमर से गले से सारे उतार के, इतना वजन उठाए सब लोगों ने, कितनी गोपियां सब फेंक दिया उन्होंने, बहुत कष्ट हुआ उनको। आप तो समझ सकती है ना कितना कष्ट होता है, कितना कष्ट होता है। एक अंगूठी भी एक पुरुष के हाथ से गायब होती है, कभी बेसिन पर रख देते हैं और चले जाते हैं शादी में, है ना, शादी में हाथ धोते तो लगता है, तो शादी में बेसिन में रखते हैं और चले जाते हैं वहाँ से, फिर वो अंगूठी के लिए दिन रात तड़पते हैं। तो एक अंगूठी है, तो गोपियाँ लदी हुई हैं अलंकार से, सब फेंक देते हैं और हाँ अभी ठीक है अभी ठीक है, फिर चालू हो नाव। फिर बीच में आ गए नाव और फिर रोक देता है, बोलते अभी भी भारी है। बोला अभी क्या करें? बोले वस्त्रों को उतार के फेंक दो, इतने वस्त्र पहने भारी भारी। बोले उससे अच्छा जो है ना आपको ही उठा के फेंक देते हैं, ज़्यादा वजन कम हो जाएगा, पर हम नाव चलाएंगे ऐसे भी करेंगे। तो फिर वो समझ जाता है, कुछ बोलता नहीं है, फिर वो नाव बढ़ाता है। ये सब लीला के बाद में ना बीच में अभी आ गए मानसिक गंगा के, ना इधर ना उधर बीच में, और अचानक बड़ा तूफान, मेघों की गर्जना होती है, गड़गड़ाहट, बारिश की तैयारी में अचानक अंधेरा हो जाता है, बहुत जोर से हवा महने लगती है, नाव डोलने लगती है, अंधेरा होकर बिजली कड़कने लगती है, और राधा रानी और सब गोपियाँ डर जाती है, और राधा रानी जाकर जोर से नाभि को गले लगाती है स्पॉन्टेनियसली, कुछ पता नहीं किसको गले मिल रहे हैं, लेकिन डर से उसको गले मिलते हैं। गले मिलते ही पता चलता है ये श्याम सुंदर है, उसका वो सारा शॉल उतार देते हैं, मुरली को खींच लेते हैं, ललिता अरे श्याम सुंदर तुम ये लीला कर रहे हैं? तो कहते आज हमको एकांत में आकर सब गोपियों के साथ नौका विहार करने का मन था, इसलिए हमने ये लीला किया। फिर वो टूटी फूटी नाव जो थी बहुत दिव्य ऐश्वर्य संपन्न तेजस्वी नाव बनी, हंसाकार, उसको भी अलंकार लगे हुए हैं, सारे अलंकार लौट के उनके शरीर पे आए और ज़्यादा अलंकार आए, कृष्ण भगवान बहुत सुशोभित अलंकृत होकर बीच में आए, सारी गोपियाँ चारों तरफ फैल गई और उस वो बोट का आकार बहुत शहर जैसा हो गया। उसमें सब कुछ है, बैठने की जगह, सिंहासन, वाद्य, खान पान की व्यवस्था, सब प्रकार के तांबूल, सब प्रकार के भोजन की व्यवस्था, पेय, खाद्य, सब कुछ उसमें प्रकट हो गया। और गोपियों ने पूरी रात भर कृष्ण के साथ नौका विहार किया, एक रात पूरी भर नौका विहार किया, लेकिन ब्रह्मा की एक रात का समय उसमें समा लिया। ब्रह्मा जी की एक रात्रि जो है वो 432 करोड़ साल की होती है। 432 करोड़ साल की कालावधि भगवान ने पृथ्वी की एक रात में समा ली, यानी गोपियों को 432 करोड़ साल तक नौका विहार का अनुभव प्राप्त हुआ, लेकिन पृथ्वी पर एक तिथि बदली सवेरे के समय सब लोग नाव पार करा के अपने अपने घर पे चले गए। बोलो नौका विहार लीला की, मानसी गंगा धाम की। मानसी गंगा के पास में हरिदेव जी का मंदिर है। इस ब्रज में चार देव हैं, वो चार देव का विग्रह वज्रनाम ने बनाया है। मथुरा में केशव देव, वृंदावन में गोविंद देव, गोवर्धन में हरिदेव, और कौन से देव हैं चौथे, बलदेव दाऊ जी दक्षिण कोने में। तो ये चार देव जो है इनके विग्रह वज्रनाम ने बनाए, तो हरिदेव जी का विग्रह भी वज्रनाम ने बनाया। जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने ये क्रम दिया है कि सबसे पहले मानसिक गंगा में स्नान करना है, हरिदेव का दर्शन करना है और परिक्रमा आरंभ करना है। तो उन्होंने स्वयं गोवर्धन की परिक्रमा, मानसिक गंगा में स्नान करके हरिदेव का दर्शन लेकर पूरी परिक्रमा की है, और एंड में वो कुसुम सरोवर आए हैं जहाँ पर उनको कृष्ण का दर्शन हुआ। चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु ने भाव विभोर होकर नृत्य करते हुए पूरी गोवर्धन की परिक्रमा की है। तो हरिदेव का दर्शन भी करेंगे, उसके बाद में वहाँ पर ब्रह्म कुंड है। जब इंद्र ने अपराध किया तो उन्होंने सुरभि के माता के दूध से और आकाशगंगा के जल से भगवान का अभिषेक किया और गोविंद कुंड का निर्माण हुआ। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने देवताओं के प्रतिनिधि अमी प्रमुख के रूप में स्वयं आकाशगंगा का जल इकट्ठा किया और भगवान का दोबारा अभिषेक किया, और उस अभिषेक के जल से ब्रह्म कुंड निर्माण हुआ है। और उसके पास में मनसा देवी का भी दर्शन है, मानसिक गंगा के उपलक्ष में मनसा देवी का सुंदर दर्शन है। दो देवियाँ उधर, एक मानसी देवी है, एक मनसा देवी है। मानसी देवी दुर्गा देवी का रूप है, और मनसा देवी जो नागलोक की नाग देवताएं हैं, कौन है वो, वासुकी नागराज, उसकी बहन है वो मनसा देवी। उसका और एक नाम है जरत कारु, उसको वो अस्तिक मुनि का पुत्र के रूप में प्राप्ति हुई थी, वो लंबी कहानी महाभारत में आती है। एनीवेज, तो वो मनसा देवी को देखने से सर्प का पूरा भय नष्ट हो जाता है जीवन में। तो देखेंगे वो सब बहुत अंदर अंदर स्थान है, अगर होगा तो हम जाएंगे, नहीं तो हम हरिदेव का दर्शन करके आगे चलेंगे, ब्रह्मकुंड का दर्शन करने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखेंगे रास्ता का साहेब राम प्रभु बताएंगे। तो इस तरह से मानसी गंगा, हरिदेव, ब्रह्मकुंड और मनसा देवी, मानसी देवी दोनों का सबका वर्णन हमने किया आपकी सेवा में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।